दाम्पत्य जीवन, उत्पत्ति, पिता का स्थान, पति पत्नी संबंध, पुत्रों के प्रकार, नारी की अवस्था एवं स्थान तथा अन्य, परिवार का परिभाषा एवं अर्थ, भूमिका। परिवार शब्द, परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है नौकर। इस प्रकार परिवार के अंतर्गत माता पिता, बच्चे, नौकर और यहाँ तक कि गुलामों को भी सम्मिलित किया जाता था। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन होते रहे हैं। परिवार बिना बच्चों के भी हो सकते हैं या माता पिता और बच्चों को मिलाकर हो सकते हैं। परिवार व्यक्ति पर जबरन लादी गई संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जन्म से ही स्वेच्छा से इसकी सदस्यता स्वीकार करता है। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार की सार्वभौमिक और सर्वसम्मत परिभाषा देना असंभव है, क्योंकि फिर भी कुछ विद्वानों ने परिवार की परिभाषा दी है। परिवार की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। माइकावर और बेज। परिवार वह समूह है जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और उनका संबंध ऐसा हो जिससे संतान उत्पन्न हो और उनका पालन पोषण भी किया जाए। इलियट और मोरिल। परिवार पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैव सामाजिक संस्था है। यह एक सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं। डीएन मजुमदार के अनुसार परिवार व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और मूल और रुधिर संबंधी गांठों से बंधे होते हैं तथा स्थान, स्वार्थ एवं कृतज्ञता की अन्यानुआस्था के आधार पर जाति की जागरूकता रखते हैं। इस प्रकार परिवार में केवल माता पिता एवं बच्चे आदि ही नहीं आते, परंतु वह सभी व्यक्ति आते हैं जो रक्त संबंधी हो, गोद लिए हुए हो तथा जिन्हें परिवार या समाज में परिवार में रहने की स्वीकृति दी हो। परिवार की विशेषताएं। फीचर्स आर फैमिली। परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर एक, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। परिवार वह संगठन है जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। मनुष्य की बात तो और वस्तुओं और पशुओं में भी परिवार पाया जाता है। सभी व्यक्ति परिवार के सदस्य होते हैं। नंबर दो, भावात्मक आधार। परिवार का आधार मनुष्य की भावना है। परिवार का जन्म ही यौन संबंध है। संतानोत्पत्ति, पुत्र प्रेम, माता प्रेम आदि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। अन्य समूहों के आधार में किस प्रकार की भावनाएं कार्य नहीं करती हैं, प्रेम, स्नेह और वात्सल्य जैसी विशेषताएं सिर्फ परिवार में पाई जाती है, अन्य किसी संस्थाओं में नहीं। नंबर तीन, रचनात्मक प्रभाव। व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, अतः उसके चरित्र निर्माण में परिवार का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। शिशु काल में परिवार का जो प्रभाव पड़ता है वह व्यक्तित्व को निश्चित करता है। परिवार में ही व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। नंबर चार, सीमित आकार। परिवार ही एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो अन्य संगठनों की अपेक्षा अत्यंत सीमित आकार का होता है। परिवार हमारी मूल प्रवृत्तियों और जैविकी दशाओं पर निर्भर रहता है, इसलिए इसके सदस्य केवल वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार का शारीरिक संबंध और मूल प्रवृत्तियों की पूर्ति में एक दूसरे के लिए सहायक हो। नंबर पाँच, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। सभी समाजों में समाज का ढांचा परिवार पर ही आधारित होता है। परिवार छोटा समाज है और एक बड़ा परिवार है। अरस्तु ने समुदाय की परिभाषा कुटुंबों का संघ इस रूप में किया है। उसके कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि परिवार के योग से ही अन्य सामाजिक संगठनों का निर्माण हुआ है। वर्तमान समय में समाज का रूप अत्यंत जटिल होता जा रहा है, इसलिए परिवार इतने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादित नहीं करते हैं। नंबर छह, सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार एक ऐसी समिति है जिसके सदस्य पर उत्तरदायित्व के भार असीमित रहते हैं। संकट के समय व्यक्ति, ग्राम, राष्ट्र के लिए भले ही अपने उत्तरदायित्व को महसूस न करे, परिवार एक ऐसा समिति है जिसके सदस्य दूसरे सदस्यों को सुख सुविधा के लिए अपने सुख को बलिदान भी करते हैं। परिवार संस्था के कार्य और उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। नंबर 7, सामाजिक नियंत्रण। परिवार मनुष्य पर सामाजिक नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन है। परिवार का नियंत्रण अत्यधिक कठोर होता है। अगर व्यक्ति परिवार के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहे तो यह असंभव होता है। परिवार की अस्थायी तथा अस्थायी प्रकृति। परिवार के दो रूप हैं। एक रूप की यह संस्था है और दूसरा यह समिति है। परिवार पति और पत्नी से मिलकर बनता है और अगर इसमें से कोई एक सदस्य इससे अलग हो जाता तो वही पर परिवार नष्ट हो जाएगा। किंतु ध्यान रखने की बात यह है कि कोई एक परिवार नष्ट होगा, सभी परिवार तो नष्ट नहीं होंगे। संस्था के रूप में परिवार सदैव अमर रहेगा। अगर इसे समिति के रूप में देखा जाए तो इसकी प्रकृति अस्थायी है। नंबर 9, परिवार एक प्रक्रिया है। मनुष्य का जीवन चार आश्रम में विभाजित है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य अवस्था से व्यक्ति जैसे ही गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है, संतानोत्पत्ति कर ब्रह्मचर्य का भार अपने संतानों पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। एक परिवार समाप्त हो जाता है, नया परिवार उसके स्थान पर आ जाता है। एक पीढ़ी समाप्त हो जाती है तो आने वाली पीढ़ी उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार एक परिवार उत्थान के बाद पतन की ओर जाता है तो दूसरा परिवार उत्थान करता है। जब इसका पतन होता है तो अन्य परिवार इसका स्थान ले लेता है। इस प्रकार परिवार एक प्रक्रिया है, यह कभी भी नष्ट न होने वाली संस्था है। परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत। नंबर 1, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। प्लेटो और अरस्तु के इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उनका मत था कि परिवार सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक थे। मानव शास्त्रियों में इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी मेन है। इसके मतानुसार परिवार का सबसे पुराना स्वरूप सर्वशक्तिशाली पिता के नियंत्रण में एक कौटुंबिकीय स्वरूप था। ऐसे परिवार में प्रारंभ में पिता की प्रधानता थी। वास्तव में देखा जाए तो पशुपालन और तथा खेतों के आविष्कार के साथ ही मनुष्य ने अपने श्रम तथा अपनी सत्ता समाज में निर्धारित कर दी। पशुपालन के कारण भूमि पर खेती के लिए अधिकार किया गया, राज्य की स्थापना हुई और स्वार्थपरता की भावना की वृद्धि हुई। स्त्री पर पुरुष ने अधिकार कर लिया। इसके साथ ही अगर स्त्री दूसरे पुरुष के पास जाती तो पुरुष को इच्छा होती है। अब एकाधिकार और इच्छा के भावना के कारण स्वयं इसकी सत्ता परिवार का जन्म हुआ तथा संपत्ति पर पुरुष का अधिकार हो गया। नंबर 2, मातृसत्ता परिवार। इस मत के विचारकों का विश्वास है कि जब शुरू शुरू में विवाह नहीं था तथा अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों के साथ रहती थी, सत्ता के प्रारंभिक काल में माता का ही राज था। ऐसी अवस्था में परिवार की संपत्ति का आधार पुत्रों को न होकर पुत्रियों का होता था। प्रारंभिक कालों में विवाह नहीं होता था, एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ रहती थी। ऐसी अवस्था में पहचानना कि कौन बच्चा किसका है असंभव होता था। इस प्रकार पिता का कोई स्थान नहीं था, माता की प्रधानता थी। टायलर ने इसी मत का समर्थन किया है। इस प्रकार के परिवारों में वंश माता के नाम पर चलते हैं। आज भी हमारे देश में आसाम के बाहरी प्रदेशों में खासी जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। इसमें विवाह के बाद लड़का लड़की के माता पिता के घर रहने चला जाता है। मालावार की नायर जाति में भी इसी प्रकार के मातृसत्तात्मक वाले परिवार पाए जाते हैं। जैसे जैसे किसी की उन्नति होती जाती है, मातृसत्तात्मक परिवारों का महत्व समाप्त होता जाता है। नंबर 3, एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार के सिद्धांत को मानने वालों का कहना है कि प्रारंभ में परिवार पितृसत्तात्मक नहीं थे, एक विवाही थे। इस सिद्धांत को मानने वालों में डार्विन का नाम मुख्य है। ऐसे परिवारों की उत्पत्ति पुरुष के एकाधिकार तथा इच्छा की भावना के कारण हुई, क्योंकि कोई पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे के पास नहीं देख सकता। इस इच्छा के कारण वंश संबंधों की सततता समाप्त हो गई और एक विवाही परिवारों का जन्म हुआ। नंबर 4, विस्तृत परिवार। इस प्रकार के संबंध दो प्रकार के हो सकते हैं, सामयिक और समूह विवाह। समूह विवाह इस प्रकार से मिश्रित परिवार का दूसरा रूप है। इस प्रकार के परिवार के अंतर्गत एक समूह की सभी स्त्रियां दूसरे के सभी पुरुषों के साथ विवाहित समझी जाती थीं। इसका रूप यह है, यह भी हो सकता है कि एक परिवार के सब भाई दूसरे परिवार की सभी बहनों से विवाह करें। इस प्रकार इस किसका पुरुष और कौन किसकी स्त्री है। यह रूप बहुपति विवाह का बहुपत्नी विवाह का मिला जुला रूप है। नंबर 5 आर्थिक परिवार। स्त्री पुरुष में लिंग संबंध के परिणाम स्वरूप संतान उत्पन्न होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चों और असहाय माँ की देखभाल कौन करे। इन उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की जिम्मेदारी पुरुष के सामने आती है। अपनी स्त्री और बच्चों को देखभाल के लिए परिवार का जन्म हुआ है। नंबर 6 विकासवादी परिवार। मार्गन ने परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार विवाह के कई अवस्थाओं से होकर गुजरा है जो लिंग है। नंबर 6 रक्त संबंधी परिवार। यह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें रक्त संबंधी आपस में विवाह करते थे। भाई बहन का कोई भी भेद नहीं था अर्थात समूह परिवार। यह परिवार के विकास की दूसरी अवस्था है जिसमें एक परिवार के सब भाई दूसरे परिवार की सब बहनों सभी एक परिवार के सब भाई दूसरे परिवार के सब बहनों से विवाह करते थे। इस प्रकार के विवाह में सब स्त्री सभी पुरुषों की पत्नियां होती थी और सब पुरुष उनके पति। नंबर 8 सिंगल स्मियर परिवार। ऐसे परिवारों में अत्यंत एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह होता था, परंतु पुरुष परिवार की सभी स्त्रियों से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। यह आवश्यक नहीं था कि जिसके साथ उसका विवाह हुआ है उसी के साथ ही यौन संबंध स्थापित करे। नंबर 9 पिति सत्ता परिवार। परिवार के विकास की चौथी अवस्था यह है कि जिसमें पुरुष का संबंध तो विवाहित पत्नी से ही होता था, परंतु वह अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, उन सब के साथ संबंध रख सकता था, अतः परिवार में पुरुष की प्रधानता हो गई। नंबर 10 एक विवाह। परिवार वालों के विकास की 5वीं अवस्था यह है कि जिसमें पुरुष अनेक विवाह के स्थान में सिर्फ एक विवाह करने लगा, स्त्री भी एक पुरुष से विवाह करने लगी। आज तो परिवार का वह रूप सामने है, वह इन्हीं अवस्थाओं से गुजर चुका है। परिवार के प्रकार। नंबर 1 प्रथम वर्गीकरण का मति सत्ता परिवार। जिस परिवार में माता की सत्ता या प्रधानता होती है उसे माति सत्ता परिवार कहते हैं। माति सत्ता के अलावा माँ की वंशी परिवार भी होते हैं। इन परिवारों में वंश परंपरा माता के नाम पर चलती है। जिस समाज में स्त्री के यौन संबंध निश्चित नहीं होते हैं उनमें बच्चों के बाप का पता लगाना कठिन होता है, इसलिए माँ के नाम पर ही वंश परंपरा चलती है। एक अन्य परिवार माँ की स्थानीय होता है। यह भेद परिवार में माता के घर रहने की दृष्टि से किया जाता है। नंबर 9 पिति सत्ता परिवार। जिस परिवार में पिता की सत्ता या प्रधानता होती है उसे पिति सत्तात्मक परिवार कहते हैं। पिति सत्तात्मक के अलावा पिति वंशी परिवार भी होते हैं। इस परिवारों से वंश परंपरा पिता के नाम पर चलती है। जिस प्रकार के परिवारों में पिता परिवार का प्रधान होता है जो संपूर्ण परिवार का प्रबंध करता है तथा अन्य सदस्यों पर नियंत्रण रखता है, जिस प्रकार के परिवार में स्त्रियों का समान अधिकार नहीं होते हैं, इन परिवारों में पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। द्वितीय वर्गीकरण एकाकी परिवार। एकाकी परिवार केवल पति पत्नी तथा उनके बच्चों से मिलकर बनता है। परिवार का यह सबसे सरलतम रूप है। समाज जैसे जैसे सब होता जाता है इस प्रकार के परिवारों में निरंतर वृद्धि हो रही है। पश्चात समाजों में इस प्रकार के परिवार अधिक पाए जाते हैं। नंबर 8 संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्रियां तथा उनके समानांतर संबंधी भी सम्मिलित किए जाते हैं। परिवार का वृद्ध सदस्य उसका संचालन करता है। इस प्रकार के परिवार में सामान्य धन सामान्य दर्शनी और सामान्य देवी देवता होते हैं। इस प्रकार के परिवार भारतवर्ष में चीन में अधिकतर पाए जाते हैं। नंबर 10 दृष्टित परिवार। यह वह परिवार है जिसमें मूलभूत परिवारों के अतिरिक्त स्त्री या पुरुष या दोनों के रिश्तेदार भी रहते हैं। संयुक्त परिवार उसका एक भेद है जिसमें केवल पुरुष के ही माता पिता पूर्वज तथा समानांतर संबंधी रहते हैं। तृतीय वर्गीकरण एक विवाह परिवार। इस प्रकार के विवाह में पति एक ही विवाह करता है, साथ ही एक ही स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करती है। प्राचीन काल में बहुविवाह परिवारों की अधिकता थी, किंतु सभ्यता के साथ एक विवाह परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। बहुविवाह परिवार इसके दो भेद किए जा सकते हैं, बहुपति विवाह परिवार और बहुपत्नी विवाह परिवार। बहुपति विवाह में एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ विवाह करती है। ये अनेक पुरुष तो या तो भ्राता हो सकते हैं या अभ्राता। जब एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह करते हैं। इसका कारण पुरुष की कामेच्छा हो सकती है जो एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होती। इसके साथ ही अधिक स्त्रियां होने से भी इस प्रकार के विवाहों में वृद्धि हो सकती है। यह प्रथा अधिकतर धनी लोगों में पाई जाती है। चतुर्थ वर्गीकरण रक्त संबंधी परिवार। इस प्रकार के परिवारों में रक्त की शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें अनेक रक्त संबंधी भी होते हैं। इस प्रकार के परिवार की एक विशेषता इसकी स्थिरता है, क्योंकि इसकी सदस्यता अन्य से निश्चित की जाती है, ना कि इच्छा पर। इस प्रकार के परिवार में विवाह बंधनों की अपेक्षा रक्त की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। नंबर खा विवाह संबंधी परिवार। इन परिवारों में मुख्य संबंध पति और पत्नी के बीच होते हैं। इस प्रकार के परिवार विवाह के आधार पर बनते हैं। इस प्रकार के परिवार अस्थिर होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के परिवारों का निर्माण पति और पत्नी द्वारा होता है। अतः इन दोनों में किसी एक की मृत्यु, परित्याग और तलाक के द्वारा इस प्रकार के परिवारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्राचीन भारत में परिवार की उत्पत्ति एवं विकास का इतिहास। व्यक्तियों के संबंधों का जाल समाज है और उस जाल का प्राथमिक रूप परिवार है। अर्थात व्यक्तियों का प्रथम संबंध जो पति पत्नी बच्चों और निकट के रक्त संबंधियों के बीच होता है परिवार है। सामाजिक संबंधों के जाल अर्थात सामाजिक व्यवस्था में परिवार न केवल प्राथमिक अपितु केंद्रीय इकाई है। अर्थात इन्हीं इसी केंद्र बिंदु परिवार से सामाजिक व्यवस्था की अन्य इकाइयों की शुरुआत होती है। परिवार के बिना ना तो कोई सामाजिक व्यवस्था बन और ना रह सकती है। यही कारण है कि इसकी स्थिति केंद्रीय है। अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण यह प्राथमिक और मौलिक इकाई होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार मानव इतिहास में सांस्कृतिक विकास की प्राथमिक कड़ी भी है। चार्ल्स कूले के अनुसार परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें बच्चे के सामाजिक जीवन और आदर्शों का निर्माण होता है। व्यक्तियों के संबंधों की इस प्राथमिक सामाजिक इकाई का इतिहास मानव इतिहास के साथ शुरू होता है। अर्थात मानव इतिहास के प्रारंभ से ही परिवार का भी प्रारंभ होता है। परिवार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इतनी आवश्यक इकाई के रूप में है कि यदि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पुनरुत्पादन की क्रिया रुक जाए, यदि बच्चों का पालन पोषण ना किया जाए और उन्हें अपने विचारों को आगामी पीढ़ी के लिए संचालित तथा एक दूसरे से सहयोग करना ना सिखाया जाए तो संभवतः समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह कुछ ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिन्हें कोई अन्य समूह अथवा संगठन नहीं कर सकता है। यह केवल कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं अभी तो समाज और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में सहयोग भी करता है। एक तरफ यह कतिपय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली समाज और उसकी संस्कृति बनाए रखने वाली तथा समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण करने वाली सामाजिक व्यवस्था की प्राथमिक इकाई के रूप में तथा दूसरी तरफ एक सामाजिक संस्था के रूप में है। अपने व्यवस्थित नियमों और विधियों द्वारा मानव जीवन को संचालित करने के कारण यह एक सामाजिक संस्था के रूप में है। सामाजिक व्यवस्था की यह एक ऐसी प्राथमिक इकाई और सामाजिक संस्था है जो सार्वभौमिक है, अर्थात विश्व के सभी समाजों में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। एंडरसन का कहना है कि परिवार की सार्वभौमिकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परिवार के अनेक रूपों में से किसी का भी सदस्य ना हो। विभिन्न विद्वानों ने परिवार के सदस्य और कार्यों के आधार पर परिवार के व्यक्तियों का समूह सामाजिक व्यवस्था की प्राथमिक इकाई और सामाजिक संस्था माना है। कुछ भी हो, यह व्यवस्था व्यवस्था की एक ऐसी इकाई और एक ऐसा सामाजिक संस्था के रूप में है जिसकी अपनी अनेक विशेषताएं हैं। विवाह संबंध उत्पादन इकाई वंश नाम समान निवास सार्वभौमिकता रचनात्मक प्रभाव भावात्मक आधार केंद्रीय स्थिति सीमित आकार सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व सामाजिक नियम तथा अस्थायी और अस्थायी प्रगति। इन विशेषताओं से मुख्य यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था और शिक्षात्मक अधिकार परिवार का अर्थ है। एल्मर अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में लिखा है कि अंग्रेजी फैमिली लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस से निकला है। इस लैटिन शब्द से एक ऐसे समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर तथा गुलाम भी आ जाते हैं। इस शाब्दिक अर्थ से परिवार का पूर्ण बोध होना कठिन है। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मनुष्य ने परिवार नामक संस्था का निर्माण किया। इससे मानव जाति को अमरत्व प्रदान किया है। हरिदत्त वेदालंकार के शब्दों में मनुष्य परम धर्मा है किंतु मानव जाति अमर है। व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, बचपन यौवन और बुढ़ापे की अवस्था भोग कर समाप्त हो जाते हैं, पर वंश परंपरा द्वारा उनका संतान क्रम अविच्छिन्न रूप में चलता रहता है। मृत्यु और अमरत्व दो विरोधी वस्तुएं हैं किंतु परिवार द्वारा इन दोनों का समन्वय हुआ है। व्यक्ति भले ही मर जाए पर परिवार और विवाह द्वारा मानव जाति अमर हो गई है। परिवार में रहते हुए भी मनुष्य परिवार की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। पाश्चात्य विचारक डनलपन ने परिवार की पूर्ण एवं सर्वग्राही परिभाषा करना असंभव कार्य कहा है। बर्गेस और लार्क ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह रक्त अथवा गोद के सूत्रों से एकीकृत है, जो एक ही गृह में निवास करते हैं, जो पति एवं पत्नी, माता एवं पिता, पुत्र एवं पुत्री, भाई और बहन के रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं, तथा जिनसे एक समान संस्कृति का निर्माण तथा पोषण होता है। माइकार्वर तथा बेस की दृष्टि में परिवार यौन संबंधों में बाधित एक ऐसा समूह है जिसका स्वरूप पर्याप्त अस्थायी और दूरगामी है। दूरगामी हो जिससे बच्चों का समुचित संरक्षण एवं पालन पोषण हो सके। उक्त पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि में परिवार के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। नंबर का सदस्यों के निवास के लिए आवास तथा नंबर का सदस्यों के रूप में पुरुष, स्त्री तथा उनसे उत्पन्न बच्चे। निम्न कास्ट ने बच्चों वाले को ही परिवार माना है। यदि पति पत्नी और उनके बच्चे नहीं है, स्त्री पुरुष के संतान एक विवाह कहकर संबोधित करते हैं। परिवार के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण पाश्चात्य दृष्टिकोण से सर्वथा ही अलग है। विदेशी विद्वानों की दृष्टि में परिवार अति संकुचित दिखाई देता है, जबकि वैदिक युग के परिवार की सीमा हरिदत्त वेदालंकार के शब्दों में देखिए। वैदिक परिवार में प्रायः 3 पीढ़ी तक के प्राणी सम्मिलित होते थे। श्राद्ध में तथा अन्य यज्ञों में पितरों के आह्वान से यह बात भली भांति पुष्टि हो जाती है। यजुर्वेद के 7:46 में कहा गया है कि हम आज यज्ञ में पिता और दादा वाले ब्राह्मण प्राप्त करें। यजुर्वेद के 19:36-37 में पिता पितामह और प्रपितामह को नमस्कार किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशज को शुद्ध करें। अथर्ववेद के एक मंत्र में परिवार के प्रिय पुरुषों के आह्वान में पिता दादा को तथा वंशजों में पुत्र पौत्र को बुलाया गया है। प्रपितामह का उल्लेख परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में भी पाया जाता है। तैतरीय संहिता के 1/8/5 के 1वें अथर्ववेद में 18 भाग के 4थे खंड के 25वें भाग में शतपथ ब्राह्मण के 2/4/2/16/12/8/7/6 अथर्ववेद के 5वें या 7 प्रकरण के सूत्रों में दादा तैतरी में 18/4/77 पर दादा पितामह और पर दादा प्रपितामह 18/4/75 को स्वधा दान का उल्लेख है। पर दादा पुरुषों से परिवार की चरम सीमा है। वंशजों में पोते पौत्र या नाप्ता का अधिक वर्णन है। अथर्ववेद के 11वें, 17वें, 18वें, 50वें, 59वें, 33वें ब्राह्मण में 7वें, 10वें में तैतरीय ब्राह्मण के 2वें के 7वें, 8वें के 3वें में पर पोता प्रणपात परिवार की चरम सीमा है। ऋग्वेद के 8वें अध्याय के 17वें भाग के 13वें खंड पर पोता तथा परदादे और पोता तक ही समझना चाहिए। इस प्रकार परिवार के इस विस्तृत रूप का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार के संबंध में भारतीय विचारधारा पाश्चात्य विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। भारतीय परिवार एक ऐसा बिंदु है जो जन्म जन्म जब तक स्त्री पुरुषों के मिले जुले आधार को प्रस्तुत करता है। विवाह को समझौता न मानकर एक संस्कार माना गया है जिसकी नींव धर्म पर आधारित है। धर्म से वह सत्य नियम बनता है जो व्यक्ति तथा समाज के नियम को धारण करते हैं। धर्म का कर्तव्य सभी बिंदुओं के सामने आता है और सभी लोग किसी रस्सी से बंधे रहते हैं। कर्तव्य की भावना के वशीभूत होकर वे सेवा के मार्ग की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उनके हृदय में प्रेम तथा श्रद्धा की भावना जागृत हो जाती है जो समाज का बड़ा कल्याण करती है। परिवार के सभी सदस्य निस्वार्थ भावना में परिवार के हित चिंतन में लगे रहते हैं। भारतीय परिवार की नींव श्रद्धा के सुमन ज्ञान तथा सब के पत्ते प्रेम त्याग सत्य व्रत तथा नियम के फल लगे रहते हैं। परिवार के सभी प्राणी उस वृक्ष को अपने कर्तव्य शरीर से सींचते रहते हैं। प्रत्येक पीढ़ी इन्हीं गुणों को लेकर आगे बढ़ती रहती है। यही कारण है कि हिंदू परिवार आज भी जीवित है, जबकि संसार में अनेक प्राचीन जातियों के परिवार काल के गाल में समा गए। हिंदू परिवार के निर्माण के तथ्य तथा गुणों को संसार के सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। देखा जाए तो भारतीय परिवार की प्रथा को किसी न किसी रूप में संसार की सभी जातियों ने अपनाया है। प्राचीन भारत में हिंदू परिवार प्रथा की उत्पत्ति। प्राचीन मानव जाति में आत्म संरक्षण संवर्धन और जाति जीवन के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान साधन है। मनुष्य मरण धर्मा है, किंतु मानव जाति अमर है। व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, बचपन यौवन और बुढ़ापे की अवस्था भोगकर समाप्त हो जाते हैं। वंश परंपरा द्वारा उनका संतान क्रम अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। मृत्यु और अमृत तत्व दो विरोधी वस्तुएं हैं, किंतु परिवार द्वारा इन दोनों का समन्वय हुआ है। व्यक्ति भले ही मर जाए, पर परिवार और विवाह द्वारा मानव जाति अमर है। एक लेखक के अनुसार, किसी चीज का उद्भव हमेशा ही अस्पष्ट तथा धुंधला होता है। किसी नदी का उद्भव जानने के लिए पृथ्वी पर जहाँ पानी का वह स्रोत दिखाई पड़ा है, वहाँ ही रुक जाना पड़ता है। धरती में यह स्रोत कहाँ से चला, इस पर कहाँ तक दिमाग खपाया जाए। जब प्रत्यक्ष वस्तुओं की यह दशा है तो अप्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए क्या कहा जा सकता है। परिवार का उद्गम जानना अप्रत्यक्ष ही हो तो है। भगवती सूत्र के शब्दों में, ऐसे उद्गमों को निश्चय से कौन जानता है, कौन इनको बना सकता है, इन पर रहस्य के अंधकार का गहन पर्दा पड़ा है। परिवार के उद्भव की तीन विचारधाराएं। परिवार के उद्भव की प्रमुख तीन विचारधाराएं सामने आती हैं। नंबर का क्रमाचार से परिवार का उद्भव, नंबर का परिवार का जीव शास्त्री उद्भव, नंबर का परिवार के उद्भव का मनोवैज्ञानिक आधार। नंबर का क्रमाचार से परिवार का उद्भव। दूसरे देशों की तरह भारत में भी विवाह संस्था का उदय क्रमाचार से हुआ। ऐसा कहा जा सकता है कि पहले स्त्री तथा पुरुषों को स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की पूरी स्वतंत्रता थी। स्त्री और पुरुषों पर विवाह तथा मैथुन पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। इस निर्वाह स्वतंत्रता की स्थिति को क्रमाचार या अनावरण, स्वच्छंद विवाह, गुण विवाह, स्वरित्व आदि कहते हैं। महाभारत के कुछ वचनों के अनुसार अनेक विद्वान यह कहते हैं कि प्राचीन भारत में पहले क्रमाचार था, बाद में उसे नियंत्रित करके विवाह का रूप दिया गया। इस मत की पुष्टि के लिए नीचे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। नंबर एक पांडु कथन, नंबर दो दीर्घतमा का नियम स्थापन, नंबर तीन कर्ण का वर्णन, नंबर चार महाभारत, पांच अन्य वर्णन। इन प्रमाणों से क्रमाचार के सिद्धांत का पोषण होता है। नीचे हम इन पांचों प्रमाणों का विस्तार में उल्लेख करेंगे। नंबर एक पांडु के शब्द। पांडु ने कहा है कि प्राचीन काल में स्त्रियां अनावरण होकर जहां चाहती थी वहां भ्रमण करती थी। वे कुमारी होकर भी अनेक पुरुषों के पास जाती थी। इनके लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। पशु पक्षियों के सामने स्त्रियों को पुरुषों के साथ मैथुन तथा समागम करने की खुली छूट थी। उत्तर पूर्व प्रदेश में आज भी यह प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान है। विवाह की मर्यादा इस देश में देर से प्रचलित हुई है। इसे स्थापित करने वाले उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु थे। एक समय की बात है कि जब उनकी माता का हाथ पकड़कर एक ब्राह्मण पिता के सामने ही ले जाने लगा और क्षेत्रीय केतु ने इस पर आपत्ति की तो उद्दालक ने कहा कि यह तो सनातन धर्म है। इस प्रकार उद्दालक ने ब्राह्मण लोग का समर्थन किया। ब्राह्मण लाकर समर्थन किया, क्षेत्र कि तू इस धर्म को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने समाज में बलपूर्वक स्त्री पुरुषों की मर्यादा की स्थापना की। नंबर टू, दीर्घतमा का नियम स्थापन। दूसरा प्रमाण दीर्घतमा की कथा है। दीर्घतमा उसके ऋषि का लड़का था। प्रदेशी नाम की स्त्री से उसने कई संतानों को पैदा किया, लेकिन बाद में उसने सुरभि की संतान से गोधर्व कमाचार सीखा तथा बिना डर वह यह कार्य खुलकर करने लगा। विवाह की मर्यादा को भंग करने वाले विधत मर्यादा दीर्घतमा के आचरण को देखकर रिसीवर क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, यह आश्रम में रहने के योग्य नहीं है, अतएव हम सभी इस पाप आत्मा को छोड़ते हैं। दीर्घतमा की स्त्री भी उससे संतुष्ट नहीं थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी जन्मांधता के कारण तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का पोषण करते करते थक गई हूँ, अब और भरण पोषण नहीं कर सकती। दीर्घतमा के राशि करने पर भी जब प्रदेशी किसी प्रकार संतुष्ट नहीं हुई तो दीर्घतमा ने कहा, मैं आज से ऐसी लोक मर्यादा की स्थापना करता हूँ कि जीवन भर नारी का एक ही पति सहारा हुआ करेगा। पति के मर जाने पर भी कोई स्त्री दूसरे को अपना पति ना बना सकेगी। अन्य पति के साथ जाने पर नारी दोषी होगी। पतिहीन स्त्रियों के लिए भी यह आज से पाप है। प्रदेशी यह सुनकर रुष्ट हुई और पति को बधवा कर गंगा में फेंकवा दिया। इस व्यवस्था से पहले विवाह तथा परिवार मर्यादा हीन था। नंबर तीन, कर्ण का वर्णन। कमाचार का द्वितीय प्रमाण कर्ण पर्व 8/40 में कर्ण के द्वारा मंद प्रदेश कोष्टक में सियालकोट की स्त्रियों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वे शराब में मदमाती होकर अपने वस्त्रों को उतार कर फेंक देती है, नाचने लगती है, मैथुन में वे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं करती। वे जिसके पास जाती है चली जाती है। ब्रह्मोक पुस्तक में पंजाब की नारियों के संबंध में भी यही बात कही जाती है। इस देश की नारियों के शिथिल आचार का कारण एक सती स्त्री का श्राप था। इस स्त्री को बाहिक लुटेरों ने उसके पति से छीना था और उसका साथ सतीत्व भंग किया था। उस सती के श्राप के कारण वहाँ की सारी स्त्रियाँ उल्टा था वैश्या हो गई थी। नंबर चार, महाभारत। महाभारत के 1/122/3 में कहा गया है कि पूर्व काल में स्त्रियाँ बंधन मुक्त स्वेच्छा से जहाँ चाहे जाने वाली और स्वतंत्र थी। वे कुमारी दशा में भी अनेक पुरुषों के साथ जाया करती थी। ऐसा करना अधर्म नहीं था क्योंकि उस समय की परिपाटी थी। इसी संदर्भ में आगे कहा गया है कि उद्वालक ऋषि के पुत्र क्षेत्र केतु जिन्हें यह धर्म असह्य था, उन्होंने बलपूर्वक स्त्री पुरुष की मर्यादा स्थापित की। नंबर पाँच, अन्य प्रमाण। महाभारत में कुछ ऐसे देशों का भी वर्णन किया गया है जहां पर विवाह कोई बंधन नहीं था। गौतम के उत्तर कुरु के संबंध में कहा गया है कि वहां स्त्रियां स्वेच्छा के साथ विचरण किया करती थी। पहले बताया जा चुका है कि पांडु के कथानुसार उत्तर कुरु में उस समय कमाचार का प्रचलन था। सहदेव दक्षिण दिशा को विजय करते हुए महस्मती नगरी में पहुँचे। वहाँ पर स्त्रियाँ शरणी होकर जहाँ चाहती थी वहाँ विचरण कर सकती थी। आलोचना। हरितत्व वेदालंकार ने उक्त प्रमाणों के आधार पर की गई कमाचार की मर्यादा का खंडन किया है तथा उसको असंगत और अनैतिहासिक कहा है। ये कथाएं केवल केवल दंतियों पर आधारित है, अतएव इनको ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। महाभारत के अलावा और किसी भी वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। वैदिक साहित्य से स्पष्ट रूप से विवाह के बाद परिवार की व्यवस्था का संकेत मिलता है। विदेशी विद्वानों ने भी कमाचार के विचार का खंडन ही किया है। प्रथम खंडनकर्ता डार्विन महोदय हैं। वेस्टरमार्क ने इस सिद्धांत के खंडन का समर्थन भी किया है। इस विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप कमाचार की मान्यता पूर्ण रूप से अमान्य सिद्ध हो जाती है। नंबर खा, परिवार का जीव शास्त्री उद्भव। विवाह का उद्भव अगर कामाचार या अनावरण से नहीं हुआ तो आखिर इसका मूल क्या है? इसका उत्तर हमको जीव शास्त्र से प्राप्त होता है। स्त्री तथा पुरुष के संबंध को अस्थायित्व तथा परिवार का मूल कारण अपनी जाति को सुरक्षित बनाए रखने की चिंता है। यदि स्त्री के गर्भ के बाद संतान होने के बाद बड़ा होने पर उसकी रक्षा ना की जाए तो मानव जाति विनष्ट हो जाएगी। पशु ऐसा भले करते हो लेकिन पक्षी तथा बंदरों में ऐसा नहीं देखा जाता। गोरिल्ला और चिंपैंजी भी परिवार बनाकर रहते हैं। छोटे परिवार के जीवों में उत्पत्ति अधिक होती है। मछली आज की परिवारों की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन मुर्गियां अंडे को देती हैं। उस समय नर उसको चोरा चारा लाकर देते हैं। यदि ऐसा ना हो तो मुर्गियों की जाति समाप्त हो जाए। अस्तन वाले जानवरों में देख रेख की आवश्यकता होती है और यह देख रेख दीर्घकालीन होता है। औरंग उवान 8 से 12 वर्ष में युवा होते हैं। इस समय यदि माता पिता की उसकी रक्षा ना करे तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। अतएव बच्चे के स्नेह आदि के लिए मातृभाव और पितृभाव की उत्पत्ति होती है। इन भावनाओं के बलवती होने के कारण यह भी है कि इनके बच्चों की संख्या कम होती है। अतएव इनकी पुष्टि करने के लिए एक परिवार बनाकर रहते हैं। बंदरों से लेकर जंगली जानवरों तक में बच्चों की रक्षा के लिए माल बनाना, घोंसला बनाना, भोजन का प्रबंध करना आदि बातें देखने को मिलती है। माता पिता और बच्चे को संबंध संसार में सार्वभौम है। उनमें कमाचार कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। उक्त वर्णन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अपनी जैविकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही मनुष्य ने परिवार की व्यवस्था को जन्म दिया है। नंबर का उद्भव का मनोवैज्ञानिक आधार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में इसका जन्म होता है और समाज में ही उसका पालन पोषण होता है और अंत में वह समाज में ही विलीन हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक है, उसका यह आशय है कि आरंभ में पुरुषाकर आत्मा ही था। उसने भली भांति अवलोकन कर आत्मा से भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति पदार्थ ही देखा। निश्चय पूर्वक उस अकेले में रमण नहीं किया। इसी कारण आज भी एकांकी पुरुष रमण नहीं करता। निष्कर्ष, दुनिया में कौन नहीं चाहेगा कि उसका कोई साथी ना हो। पुरुष तथा स्त्री दोनों ही अपने सुख तथा दुख के भागीदार एक दूसरे को बनाते हैं। मिलकर वे एक साथ रहते हैं तथा साथ ही साथ बड़े से बड़े दुख को भी सह लिया करते हैं। सुख के समय वे एक साथ मिलकर सुख मनाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुष्य अकेले ना रहने के कारण साथ रहने की उसकी प्रवृत्ति ने परिवार को जन्म दिया है। हिंदू परिवार के विकास तथा स्वरूप। पारिवारिक प्रथा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इनके प्रमाण वैदिक ग्रंथों में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक वैदिक ऋषि का एक परिवार होता था जिसमें पत्नी, बच्चे तथा अन्य कुटुंब के सदस्य होते थे। वह सबके मंगल की प्रार्थना करता था। ऋग्वेद के सभी मंडलों के रचयिता ऋषियों को अपने अपने परिवार थे, उनकी संतानें थी तथा वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। पाश्चात्य देशों में परिवार नहीं होता। माता पिता अपने संतानों को बड़ा होने पर अलग कर देते हैं, जबकि हिंदुओं में सम्मिलित कुटुंब व्यवस्था सदा से ही वर्तमान रही है। कुछ शास्त्रकारों का मत है कि पुत्रों को अपने माता पिता के जीवित रहते अलग अलग नहीं होना चाहिए। किसी को संयुक्त परिवार प्रथा कह सकते हैं। एक ही घर में माता पिता, भाई बहन सभी मिलकर रहते थे। सबका भोजन एक स्थान पर बनता था। सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहायक होते थे। संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व होता था। सम्मिलित उत्पादन की व्यवस्था थी तथा उपभोग भी सम्मिलित हुआ करता था। इस प्रकार यदि हम संयुक्त परिवार की परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार एक कारपोरेशन या सामूहिक संगठन है जिसका मुखिया गृहपति एक प्रकार की ट्रस्टी है जो समूचे परिवार की संपत्ति का प्रबंध किस दृष्टि से करता है कि उसके सदस्यों का भौतिक तथा पारलौकिक कल्याण हो। सदस्यों की सारी कमाई एवं संयुक्त कोष में डाली जाती थी और गृहपति सबकी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए इस कोष का उपयोग कर सकता है। इसमें हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार कमाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करता है। इस प्रकार संयुक्त कुटुंब प्रणाली काफी अंशों में समाजवाद के आदर्शों को पूर्ति करती है। उपरोक्त परिभाषा में हिंदू संयुक्त कुटुंब प्रणाली की अनेक विशेषताएं खुलकर सामने आई हैं। दीर्घ काल से चली आने वाली इस व्यवस्था का आधार इतना मजबूत रहा है कि अभी भी भारत में प्रायः ग्रामीण इलाकों में इस प्रथा का बोलबाला है। प्राचीन भारत में बड़े बड़े परिवार एक छोटे राज्य के समान होते थे। परिवार का मुखिया निरंकुश शासन के रूप में होता था। कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। इस प्रणाली की कुछ खास विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, इस प्रणाली में पिता माता पुत्र पुत्री भाई बहन चाचा चाची आदि कुटुंब के सदस्य एक साथ रहते थे। नंबर दो, इस प्रणाली में एक ही निवास स्थान एक ही भोजनालय का प्रयोग किया जाता था। सबको अपने हिस्से के मुताबिक संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। परिवार के सभी सदस्य मुखिया के आश्रित थे। हिंदू परिवार का विकास, इसके विकास की पांच अवस्थाएं थी। नंबर एक, पूर्व वैदिक काल ऋग्वेद। ऋग्वेद में संयुक्त परिवार का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि वेदों की रचना के पूर्व आर्यों में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद का एक ऋषि विवाह के पश्चात वर वधु को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि तुम यही इसी घर में रहो, विलुप्त मत हो, अपने घर में पुत्रों व पौत्रों के साथ खेलते हुए तथा आनंद मनाते हुए सारी आयु का उपभोग करो। यहाँ हम देखते हैं कि पुत्र व पौत्र सबका एक साथ निवास करना संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का द्योतक है। नंबर दो, उत्तर वैदिक काल। यह युग का एक प्रकार से पारिवारिक विघटन का युग था। ईसा पूर्व 600 ईस्वी से लेकर 6वीं शताब्दी तक पुत्र पिता के जीवित रहते ही अपना भाग अलग कर लेता था। इनके अनेक कारण थे। पिता के असीमित अधिकार से तंग आकर पुत्र संपत्ति के बंटवारे की मांग करने लग गए थे, अतः इस प्रकार परिवार टूट रहे थे। वैदिक साहित्य में इस प्रकार के अनेक उदाहरण भर पड़े हैं। मनु ने अपने पुत्रों में दाय का बंटवारा किया था। इस प्रकार संपत्ति के बंटवारे का प्रथा का प्रचलन आरंभ हो गया था। नंबर तीन, मध्यकालीन युग। इसको 600 ईस्वी से लेकर 1000 तक माना जा सकता है। इस काल में भी पारिवारिक विघटन की प्रवृत्ति का तेजी के साथ विकास हुआ। अपने प्रयास से अर्जित की जाने वाली संपत्ति पर निजी स्वामित्व माना गया। नंबर चार, आधुनिक युग। इस काल को 19वीं शताब्दी तक मान सकते हैं। इस काल में संयुक्त कुटुंब प्रणाली का काफी प्रचलन बढ़ गया था। पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार पारिवारिक एकता बनी रहती थी। पिता के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर उसके सभी पुत्रों का समान अधिकार होता था। पिता के जीवन काल में संपत्ति उसकी होती थी और वह उसका किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता था। यह परंपरा अंग्रेजों के समय में भी काफी प्रभावशाली थी। नंबर पाँच, स्वातंत्रोत्तर काल। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। पारिवारिक विघटन इस युग की मूल सामाजिक प्रवृत्ति है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण प्राचीन भारतीय आदर्श टूट रहे हैं। अतिशय भोगवादी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य पारिवारिक बंधनों व मर्यादाओं को तोड़कर उन्मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहता है। औद्योगिक कालों से आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बदल गई है, अतः आज के बदले हुए परिवेश में संयुक्त कुटुंब व्यवस्था का टूटना अवश्यम्भावी है। छोटे परिवार में लोग अधिक स्वतंत्रता तथा स्वच्छता का उपभोग कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से प्राचीन पारिवारिक व्यवस्था की टांग लड़खड़ा रही है। निष्कर्ष, उपरोक्त वर्णन से इस बात का पता चलता है कि सभी काल में कुटुंब प्रणाली की दशा एक सी नहीं रही, बल्कि समय समय पर बदलती रही है। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह परंपरा भारतीय इतिहास में सदैव जीवित रही है। आधुनिक युग में यद्यपि संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था पर निरंतर चोट हो रही है, फिर भी यह स्वतंत्र बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा पारिवारिक विघटन कम हुआ है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण, संसार की समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं में भारतीय परिवार का विशिष्ट स्थान है। इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर एक, हिंदुओं में प्रति पूजा की भावना। वैदिक आर्यों में अपने पूर्वजों की पूजा का प्रचलन था। पिति पक्ष में पितरों का आह्वान किया जाता था तथा उनकी पूजा की जाती थी। यह पूजा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा घर पर ही की जाती थी, अतः यह आवश्यक था कि पारिवारिक विघटन को रोका जाए। यह परंपरा संयुक्त परिवार को बनाए रखने में काफी महत्व की रही है। नंबर टू, धार्मिक भावना। धार्मिक कारणों से भी परिवार की एकता बनी रहती थी। पूर्वजों को प्रसन्न रखने के लिए परिवार की एकता को बनाए रखना आवश्यक माना जाता था। नंबर नंबर 3 अग्नि पूजा। प्राचीन भारत में अग्नि पूजा खूब प्रचलित थी। अग्नि को होत्र दिया जाता था, अग्नि का गुड़ जलाना होता है, अतः अग्नि से तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। अग्नि पूजा एक पारिवारिक रिवाज था, अतः इसके कारण ही संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली को बढ़ावा मिलता था। नंबर 4 आर्थिक कारण। भारत के किसी प्रधान देश रहा है संयुक्त परिवार प्रणाली किसी व्यवस्था की देन है। किसी के कारण खाने पीने की वस्तुओं की कमी नहीं होती थी, अतः परिवार के सभी सदस्य एकता के सूत्र में बंधे रहते थे। परिवार के सदस्यों में कुछ लोग उत्पादन के कार्यों के योग्य न होने पर भी भार नहीं होते थे। उदाहरण के लिए लंगड़े, गूंगे व बहरे अपाहिज व्यक्तियों का गुजर भी इस व्यवस्था के कारण हो जाता था। यही कारण है कि संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में एक लंबे समय से बनी आ रही है। संयुक्त परिवार का अर्थ। हिंदू सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अद्वितीय व्यवस्था है। वैदिक काल से आज तक यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण परंपरागत सामाजिक व्यवस्था है। वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है कि भारतीय धर्म, दर्शन, आर्थिक जीवन, वर्ण और आश्रम ए और इसी प्रकार के अन्य कितने ही तत्व हमारे सामाजिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रयोग कहे जा सकते हैं, पर सबसे सुलभ, सुखकारी एवं महत्वपूर्ण संस्था भारतीय परिवार है। भारतीय संस्कृति में वैसुधव कुटुम्बकम की जो धारणा है, संयुक्त परिवार व्यवस्था उसी की प्रतीक है। पारस्परिक दायित्वों के निर्वहन, सुरक्षा एवं सहयोग की भावना, स्वार्थ की संकुचित सीमाओं से मुक्ति, समूह कल्याण तथा आर्थिक उत्पादन की संगठित व्यवस्था के कारण संयुक्त परिवार एक सामाजिक संगठन है। संयुक्त परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। विद्वानों ने संयुक्त परिवार की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की है। पूरे देश में इनकी संरचना एक ही नहीं है। उत्तर भारत में यह मिताक्षरा तथा बंगाल में दाय भारतीय नियमों पर आधारित है। संरचना में भिन्नता के कारण भी परिभाषाओं में अंतर है। श्रीमती इरावती कार्वे ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है। संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, समान संपत्ति से संबंधित होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं। डॉक्टर आईपी देसाई के अनुसार उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिनमें अनेक पीढ़ियों के 3 से अधिक सदस्य एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्व द्वारा एक दूसरे के संबंधित होते हैं। पीढ़ियों पर अत्यधिक बल देने के कारण यह परिभाषा भ्रमपूर्ण हो गई है। यदि इसे सर्वमान्य कसौटी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही पीढ़ी के 2 या 2 से अधिक भाइयों के मूल परिवारों को, जिनकी संपत्ति समृद्ध हो तथा जो एक ही मकान में रहते हो और एक ही रसोई में भोजन करते हो, संयुक्त परिवार नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर श्याम शरण दुबे का कहना है कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं तो और उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो तो उन्हें सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 रक्त संबंध। संयुक्त परिवार में सगे भाइयों के मूल परिवारों अथवा एक ही रक्त संबंध की 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के मूल परिवारों के लोग रहते हैं। इस प्रकार के परिवार में ऐसे सगे भाई एक ही रक्त संबंध की कई पीढ़ियों के लोग भी हो सकते हैं जो अविवाहित हो तथा जिनका कोई मूल परिवार ना हो। नंबर 2 बड़ा आकार। सगे भाइयों अथवा एक ही रक्त संबंध को कई पीढ़ियों के मूल परिवारों के लोगों के इसमें रहने से इसका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार ऐसे परिवार भी देखने को मिलते हैं जिनकी सदस्य संख्या 100 या उससे अधिक होती है। नंबर 3 सामान्य वास्य। संयुक्त परिवार के सदस्यों का सामान्य निवास होता है, अर्थात वे एक ही मकान में रहते हैं। डॉक्टर देसाई ने सामान्य निवास को संयुक्त परिवार की अनिवार्य विशेषता के रूप में नहीं स्वीकार किया है, नहीं स्वीकार किया है। उनका यह दृष्टिकोण गलत है। जब तक एक ही रक्त संबंध से कई मूल परिवार के लोग एक ही मकान में नहीं रहते, तब तक उनका परिवार को संयुक्त परिवार नहीं कहा जा सकता। यदि एक ही गांव में अथवा नगर में ऐसे ही रक्त संबंध के लोगों के परिवार अलग 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 मकान में रहते हैं तथा भोजन की अलग अलग व्यवस्था करते हैं, तो वे मूल अथवा केंद्रीय परिवार का निर्माण करते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि कुछ भाइयों अथवा रक्त संबंधियों का अविभाजित पैतृक गृह हो तथा उनकी संपत्ति का बंटवारा न हुआ हो, वे अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका परिवार संयुक्त परिवार होगा। उन विद्वानों के मत सत्य से परे नहीं है। आज की परिस्थिति में सभी भाई अथवा रक्त संबंधी एक ही गांव अथवा नगर में व्यवसाय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी हालात में सभी भाइयों अथवा रक्त संबंधियों के एक ही मकान वाली शर्त उस स्थिति में पैदा होती है जब सभी भाई अथवा रक्त संबंधी एक ही गांव अथवा नगर में रहते हैं और व्यवसाय करते हैं। नंबर 4, सम्मिलित संपत्ति। संयुक्त परिवार में सभी भाइयों अथवा रक्त संबंधियों की संपत्ति सम्मिलित नहीं होती। उनमें पैतृक तथा उसके द्वारा अर्जित दोनों प्रकार की संपत्ति होती है। संपत्ति होती है उसके संयुक्त परिवार के सभी सदस्य लाभ उठाते हैं, तभी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संपत्ति के बंटवारे से परिवार का विघटन हो जाता है। संयुक्त परिवार की अभिव्यक्त संपत्ति पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। नंबर 5, पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। संयुक्त परिवार पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य की भावना पर निर्भर करता है। प्रत्येक से उनकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत इस प्रकार के परिवार का आधार है। उसका प्रत्येक सदस्य यह समझता है कि उसमें उनका अधिकार है। इसके साथ ही सभी एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होते हैं। प्रत्येक के लिए सब और सबके लिए प्रत्येक उसका आदर्श है। इस प्रकार के परिवार में सभी की स्थिति और सभी का उत्तरदायित्व निश्चित होता है। कर्ता को छोड़कर किसी का भी विशेषाधिकार नहीं होता है। नंबर 6, एक उत्पादक इकाई। खेती बाड़ी तथा कुटीर उद्योग धंधों पर निर्भर रहने वाले संयुक्त परिवारों के सदस्य मिलकर परिवार का परंपरागत व्यवसाय करते हैं। कृषक समाज में सभी स्त्रियां और पुरुष मिलकर खेती का काम करते हैं। आज परिस्थिति बदल गई है। सभी परिवारों के लोगों का झुकाव नौकरी तथा व्यापार आदि की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर भी जो लोग घर पर रहते हैं वे परिवार के परंपरागत व्यवसाय में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में होता है। नंबर 7, सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक कर्तव्य। संयुक्त परिवार में सामान्यतः सभी सदस्यों का एक धर्म होता है तथा परिवार के सामाजिक कार्यों, विवाह, पारिवारिक संस्कारों और त्योहारों में लोग सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेना वे अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व समझते हैं। यही कारण है कि वे समय समय पर उस नगर से अपने पैतृक निवास स्थान पर आते रहते हैं जहां वे नौकरी अथवा व्यवसाय करते हैं। नंबर 8, आर्थिक स्थिरता। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्यों द्वारा अर्जित आमदनी होती है। उसमें अनेक कमाने वाले होते हैं तथा परिवार का एक सामान्य कोष होता है। यदि किसी सदस्य की नौकरी छूट जाती है अथवा आय का साधन बंद हो जाता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। सामान्य कोष तथा अनेक सदस्यों की आय के कारण संयुक्त परिवार में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। नंबर 9, सांस्कृतिक निरंतरता। संयुक्त परिवार में सदस्य अपने बड़ों से आचार प्रथा परम्परा और धार्मिक कार्य सीखते हैं। ये परंपरागत रूप में चलते रहते हैं। इनमें अपने सांस्कृतिक प्रतिभान भी होते हैं। इनका भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पालन होता रहता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार में संस्कृति की रक्षा होती है तथा उसकी निरंतरता बनी रहती है। निष्कर्ष, संयुक्त परिवार संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था है जिसमें सम्मिलित संपत्ति वास अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है। इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि संयुक्त परिवार कल्याण संयुक्त परिवार व्यवस्था एक ही रक्त से संबंधित एक ही पीढ़ी अथवा कई पीढ़ियों के लोग के मूल परिवारों की वह पारिवारिक व्यवस्था है जिसमें संयुक्त परिवार की विशेषताओं का समावेश होता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था अधिकार नहीं अपितु कर्तव्य है। त्याग सेवा तथा स्नेह की भावना पर आधारित होती है। इसमें प्रत्येक सदस्य दूसरे के प्रति कर्तव्य भावना से प्रेरित होता है तथा सभी एक दूसरे से सहयोग करते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य अथवा इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर का आर्थिक कार्य। संयुक्त परिवार व्यवस्था में सभी लोगों की आय सम्मिलित होती है तथा खर्च भी सम्मिलित रूप से किया जाता है। कम ही खर्च में अधिक लोगों का भरण पोषण हो जाता है। नंबर एक, खर्च का बचाव। संयुक्त परिवार में आवश्यकता की अनेक वस्तुएं सामान्य होती हैं। अलग परिवार बसाने से सामान्य वस्तुओं को भी अलग अलग खरीदना पड़ता है जिससे खर्च अधिक होता है। उसमें खर्च पर बड़े बूढ़ों का निमंत्रण होता है। अपने अनुभव के कारण वे नियंत्रित ढंग से खर्च करते हैं। वे इस बात का प्रयास करते हैं कि कम खर्च में अधिक लोगों का भरण पोषण हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में धन का अपेक्षाकृत अधिक बचाव होता है तथा उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तथा सदस्यों में आर्थिक सुरक्षा की भावना बनती है। नंबर दो, सदस्यों को लाभ। संयुक्त परिवार व्यवस्था में सम्मिलित आय और संपत्ति होने से सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाता है। सभी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं तथा सभी के लिए आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जाती है। नंबर तीन, आर्थिक सुरक्षा। सम्मिलित संपत्ति तथा आवश्यकताओं की पूर्ति होने के कारण व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा की भावना का अनुभव करता है। नंबर चार, खेतों के टुकड़े होने से बचाव। संयुक्त परिवार व्यवस्था खेतों को अनेक टुकड़ों में बांटने से बचाती है। उनके टुकड़ों में बंटने के कारण उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह व्यवस्था कृषि में सहायक है। नंबर खा, सामाजिक कार्य। सामाजिक दृष्टि से भी संयुक्त परिवार व्यवस्था के अनेक कार्य हैं अथवा इनके अनेक लाभ होते हैं। नंबर एक, सामाजिक बीमा। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के लिए बीमा कंपनी के रूप में कार्य करता है। शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अक्षम हो जाने के बाद इसका सदस्य असुरक्षा की भावना का अनुभव नहीं करता है। उसे भी अन्य लोगों की तरह सुविधाएं मिलती है तथा बीमारी और वृद्धावस्था में उसकी सेवा सुश्रुषा होती रहती है। किसी भी अवस्था में उसे भूखे मरने का भय नहीं होता है। वह किसी का मुखापेक्षी नहीं होता है। नंबर दो, अक्षम निर्बल तथा बूढ़ों के लिए आदर्श स्थापन। संयुक्त परिवार अक्षम निर्बल तथा वृद्ध सदस्यों के लिए सहारा ही नहीं होता अपितु उन्हें यह एकांकी जीवन के कष्टों से मुक्त भी करता है। परिवार का कोई भी सदस्य यह अनुभव नहीं करता है कि वह अकेला है। बूढ़ों विधवाओं तथा अनाथों के लिए यह एक आदर्श स्थान होता है। नंबर तीन, बच्चों के पालन पोषण का आदर्श स्थान। संयुक्त परिवार उदारता सहिष्णुता सेवा सहयोग प्रेम सद्भावना और आज्ञाकारिता के लिए प्रशिक्षण स्थल है। बालक परिवार में गुण सीख कर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। वह सबके लिए जीना और मरना सीखता है। बड़े बूढ़ों के नियंत्रण में रहने के कारण वह समय और अनुशासन की आदत सीखता है तथा अपने चरित्र का निर्माण करता है। वह बूढ़ों के अनुभव से अनेक लाभ उठाता है। नंबर चार, निस्वार्थ भावना। सहयोग त्याग और सहिष्णुता जैसे गुण संयुक्त परिवार के आधार हैं। वह सभी सदस्यों के सामान्य हित पर न किसी एक सदस्य के स्वार्थ पर ध्यान देता है। इस प्रकार वह व्यक्ति की व्यक्तिवादिता पर रोक लगाता है। इसका वातावरण ऐसा होता है कि बालक बचपन से ही अपने अहम को समस्त में विलीन कर बेहद हित के बारे में विचित विचार करने का अभ्यास डाल देता है। दूसरों के सुख दुख की चिंता करने का उसका स्वभाव हो जाता है। सहयोग त्याग और सहिष्णुता के कारण वह निस्वार्थ भावना वाला हो जाता है। नंबर 5, मनोरंजन का उत्तम साधन। संयुक्त परिवार मनोरंजन स्थल भी होता है। बच्चों की तोतली बातों, सदस्यों के आपसी प्रेमपूर्ण सहयोगपूर्ण व्यवहार तथा त्योहारों और आध्यात्मिक संस्कारों को मिलकर मनाने से प्रत्येक सदस्य का काफी हद तक परिवार में ही मनोरंजन हो जाता है। नंबर 6, पारिवारिक परंपरा आदि की रक्षा। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्यों के एक साथ रहने के कारण पारिवारिक आचारों, प्रथाओं और परंपराओं की रक्षा होती है। ये एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार व्यवस्था में ऐसे ही गुणों का समावेश है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा समाज की गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। संयुक्त परिवार के निम्नलिखित प्रमुख गुण हैं। नंबर 1, पारिवारिक बीमा। यदि परिवार का कोई सदस्य दुर्घटनाग्रस्त या आपत्तियों से त्रस्त रहता है तो परिवार के शेष सदस्य उसे धीरे धीरे नहीं अंतिम समय तक सहायता भी करते हैं। नौकरी छूटने, भोजन की, पति की मृत्यु के, संतान के पालन पोषण की तथा अपंग होने की स्थिति में सहायता की मांग नहीं करनी पड़ती। ये सभी सुविधाएं स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। राम विहार सिंह तोमर ने लिखा है कि संयुक्त परिवार एक ऐसी बीमा संस्था है जो प्रत्येक आपत्ति का बिना किसी निश्चित दर के बीमा करती है। नंबर 2, मित्रव्ययिता। यदि परिवार के सभी सदस्य पृथक पृथक रहने लगे तो घर, जमीन, रसोई, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आवागमन तथा अन्य मदों पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च होगा। संयुक्त परिवार में वस्तुएं अधिक मात्रा में सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं तथा सामूहिक उपभोग के कारण व्यय का अनुपात कम रहता है। नंबर 3, परोपकारी भावना। परस्पर सुख दुख में सहभागी बनकर दूसरे के कष्टों को बांटने का प्रयास संयुक्त परिवार के सिद्धांततः पाया जाता है। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य परोपकार तथा दया की भावना से अभिभूत होता है। नंबर 4, अधिक उत्पादन तथा अधिक लाभ। संयुक्त परिवार की अविभक्त संपत्ति होने के कारण अधिक पूंजी की लागत में अधिक श्रम कार्य द्वारा परिवार के सदस्य अधिक उत्पादन कर लेते हैं तथा लाभ भी अधिक प्राप्त हो जाता है। किसी व्यवसाय के लिए यदि लाख रुपए की आवश्यकता है तो 4 भाई मिलकर उस व्यवसाय को हाथ में ले सकते हैं, किंतु प्रत्येक भाई 25,000 रुपए के अपने हिस्से से वही व्यवसाय करने का विचार भी नहीं कर सकता। सदस्यों के अधिक होने के कारण प्रत्येक का कार्य बढ़ जाता है, अतः ना तो किसी पर अधिक बोझ पड़ता है और ना ही कोई दूसरे के काम में दखल डालता है। नंबर 5, मनोरंजन का साधन। देवर, भाभी, जीजा, साली, भुआ, भतीजे के स्नेह सिद्ध संबंध, बूढ़ों की पोपड़ी तथा बच्चों की तोतली भाषा व्यक्ति को भरपूर मनोविनोद कर प्रदान करती है। रक्षा बंधन, भैया दूज, दीपावली, दशहरा, होली, करवा चौथ आदि अवसरों पर प्रत्येक संयुक्त परिवार में मनोरंजन किया जाता है। नंबर 6, व्यक्तित्व विकास में सहायक। संयुक्त परिवार में समान आयु तथा समान स्तर के कई लोगों का परस्पर संपर्क रहता है, जिसके कारण बच्चों में शिक्षा की होड़, युवतियों में कढ़ाई सिलाई की, देवरानी जेठानियों में अच्छा भोजन बनाने की, युवकों में जिम्मेदारी निभाने की तथा नौकरी पेशा लोगों में अधिक कमाई की प्रतिस्पर्धा जागृत हो जाती है। प्रतियोगिता एक ओर तो पारिवारिक सदस्यों को घर सजाने संवारने में सहयोग देती है, वही दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण प्रत्येक सदस्य को अपना व्यक्तित्व विकसित करने हेतु प्रेरित करती है। नंबर 7, नियंत्रण तथा अनुशासन। 3-4 पीढ़ी के सदस्यों के संयुक्त निवास के कारण प्रत्येक सदस्य का व्यवहार नियंत्रित तथा अनुशासित रहता है। एक ओर जहां बड़े बूढ़े के भय के कारण युवक युवतियां तथा बहु बेटियां उच्च खलता से दूर रहते हैं, वही बच्चों की शरारतों तथा मारपीट की आदतों पर माता पिता का भी नियंत्रण बना रहता है। अपवाद स्वरूप यदि घर का मुखिया या सदस्य चारित्रिक दृष्टि से पतित या जुए शराब का आदि हो तो वह भी बहुओं और पोते पोतियों की दृष्टि में सम्मानजनक बने रहने के लिए अपने आप को अनुशासित करने का प्रयास करता है। संयुक्त परिवार के दोष। संयुक्त परिवार निरंतर अधोगति की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था में सामंजस्य का अभाव कम होना। सामंजस्य तथा संगठन में अनेक कारणों से बाधाएं पहुंची हैं। संयुक्त परिवार होने से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गतिशीलता में बाधा। संयुक्त परिवार की संरचना के कारण सदस्यों में पराश्रयता का भाव जन्म लेता है। भरे भूरे परिवार से पृथक होकर पढ़ने या कमाने की कल्पना भी उन्हें प्रीतिकर नहीं लगती। कई बार देखा गया है कि स्वयं माता पिता भी अपने पुत्र को सम्मानप्रद नौकरी के लिए दूसरे शहर भेजने के स्थान पर भावुकता का मुखौटा ओढ़कर उसे उसी शहर या गांव में रहने के लिए बाध्य कर देते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन के गतिशीलता में अनेक प्रतिरोध उपस्थित होते हैं, जो कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिप्रद है। नंबर 2, आलस्य में वृद्धि। ना कमाने पर भी दो वक्त की रोटी तो परिवार में मिल ही जाएगी। इस धारणा के कारण वे दिन प्रतिदिन अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते हैं। ऐसे सदस्यों को कई बार अपने स्वाभिमान या व्यक्तित्व की भी चिंता नहीं रहती। नंबर 3, द्वेष तथा कलह। सामान्य आवास में रहते हुए सभी सदस्य सामान्य मापदंड पर नहीं तोले जा सकते। कोई गोरा होता है, कोई काला, कोई पढ़ने में तेज होता है तो कोई मंद बुद्धि, किसी की पत्नी अत्यंत सुंदर होती है तो किसी की सामान्य या कुरूप। ये सारी विभिन्नताएं इच्छा तथा देश को जन्म देकर कलह का कारण बनती है। नंबर 4, निर्धनता। संयुक्त परिवार में कार्यरत सदस्य कम होते हैं तथा खाने वाले अधिक। आर्थिक निश्चिंतता के कारण कई सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं हो पाता है। जहां कमाने वाले कम तथा खाने वाले अधिक होंगे, स्वाभाविक रूप से वहां निर्धनता अधिक होगी। नंबर 5, व्यक्तित्व के विकास में अवरोध। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य पर समान भाव से आर्थिक व्यय होता है, अतः प्रखर तथा मंद बुद्धि वाले सदस्यों के मध्य कोई सीमा रेखा नहीं होती है। अक्सर इच्छा के कारण दूसरों के विकास में बाधा डाल दी जाती है। युवकों, युवतियों तथा बहुओं को आत्मनिर्भर होने से रोका जाता है। नंबर 6, बच्चों की उपेक्षा। माता पिता अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं तथा बच्चों की देखभाल प्रायः दादी बुआ ही कर पाती हैं। दादी के प्यार में वे बिगड़ जाते हैं, माता पिता का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रह पाता। नंबर 7, स्त्रियों की निम्न स्थिति। प्रायः बहुओं की ही स्थिति संयुक्त परिवारों में निम्न होती है, किंतु इसका यही अर्थ नहीं है कि अन्य स्त्री सदस्यों का स्थान उच्च होता है। तुलनात्मक रूप से ननद जेठानी तथा सास का पद अवश्य ऊंचा होता है, किंतु पारिवारिक मसलों पर स्त्रियों की राय लेना ठीक। उन्हें पति की दासी, सास ससुर की सेविका, बच्चों की आया तथा बड़ों के हाथ पैर दबाकर सबको सो जाने पर सोने वाली नौकरानी माना जाता है। उनकी इच्छाओं का कभी कभी तो इतना दमन किया जाता है कि वे आत्महत्या तक कर लेती हैं। नंबर 8, मुखिया की निरंकुश प्रवृत्ति। प्रायः संयुक्त परिवारों का मुखिया अत्यंत निरंकुश होता है। विवाह, संस्कार आदि में उसकी इच्छा सर्वमान्य होती है। ना तो वह परामर्श लेना पसंद करता है, ना ही विवाह योग्य सदस्यों का किसी ओर रुचि प्रकट करना उसे पसंद आता है। कई परिवारों में तो युवा सदस्य अपनी इच्छा से नौकरी तक नहीं कर सकते। परिवार के युवा सदस्यों को महत्व देना वह अपना अपमान समझता है, जबकि युवा सदस्य उसका अहम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। नंबर 9, स्त्रियों की निम्न स्थिति। संयुक्त परिवार में पारिवारिक मामलों में स्त्रियों की राय लेना उचित नहीं समझा जाता है। नंबर 10, पर्दा प्रथा। संयुक्त परिवारों में पर्दा प्रथा आवश्यक रूप में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांत इसके अपवाद अवश्य हैं, किंतु अन्य स्थानों पर यह हिंदुत्व का प्रतीक मान लिया गया है। जो पढ़ी लिखी बहुएं इसका विरोध करती हैं तो उन्हें अधार्मिक तथा चरित्रहीन माना जाता है। पर्दा स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। जहाँ जेठ को तपती दोपहर में पुरुष सदस्य कमर पर सिर्फ अंगूठा डाले घूमते रहते हैं, वहाँ स्त्रियों को यह भी छूट नहीं मिलती कि वे सिर पर आंचल से उतार कर ठंडी हवा प्राप्त कर सके। नंबर 11, पीढ़ियों का संघर्ष। प्रायः संयुक्त परिवारों में कम से कम तीन पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। तीनों का समय संस्कार तथा प्रचलों का आदर्श भिन्न भिन्न होता है। अतः दादी दादा जहां पोते पोतियों को असीमित प्यार देते हैं, वहीं उनका संघर्ष भी जब तक मुखरित होता रहता है। ये संघर्ष मुख्य तीन कारणों से होते हैं। नंबर का एक पीढ़ी पराशरता को महत्व देती है तो दूसरी आत्मनिर्भरता को। खा एक पीढ़ी अनुशासन चाहती है तो दूसरी स्वतंत्रता। नंबर का एक पीढ़ी के संस्कार कम से कम 25-30 वर्ष पुराने होते हैं तो जो दूसरी पीढ़ी के नए संस्कारों से मिल नहीं खाते। होटल सिनेमा सह शिक्षा प्रेम विवाह तथा जाति नियम से पहलू होते हैं जिनका भरसक विरोध होता है। निष्कर्ष उपरोक्त सभी दोषों की विवेचना यह प्रमाणित करती है कि अनेक लाभकारी पक्षों को समेटे हुए संयुक्त परिवार की संरचना वास्तव में व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। सभी अच्छाइयों के बावजूद इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शिशु से लेकर वृद्ध तक संयुक्त परिवार के ढांचे में ऐसे ढल जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का प्रयास संघातक सिद्ध होता है। ना यह साहस बच्चे कर पाते हैं और ना ही बूढ़े, ना लड़किए ना बहुए। संयुक्त परिवार के प्रकार। पारिवारिक सत्ता तथा पैतृक संपत्ति में अधिकार के आधार पर संयुक्त परिवार के भेद किए गए हैं। पारिवारिक सत्ता के आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं। नंबर एक पिति सत्तात्मक या पिति वंशीय संयुक्त परिवार। नंबर दो माति सत्तात्मक या माति वंशीय संयुक्त परिवार। पिति सत्तात्मक या पिति वंशीय जिन संयुक्त परिवारों में पारिवारिक सत्ता अर्थात परिवार के संचालन और उस पर नियंत्रण का अधिकार पिता अथवा परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति अथवा किसी पुरुष के हाथ में होता है, उन्हें पिति सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। इस परिवार के प्रकार की निम्न विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर एक पारिवारिक सत्ता पिता अथवा किसी पुरुष के हाथ में होती है। नंबर दो बच्चे पिता का वंश नाम ग्रहण करते हैं। नंबर तीन ऐसे परिवार में एक रक्त संबंध वाले कई पीढ़ियों अथवा एक दो पीढ़ियों के पुरुष उनकी स्त्रियां तथा उनके लड़के और अविवाहिता लड़कियां होती हैं। पिता की संपत्ति पर लड़कों का अधिकार होता है, माता के परिवार की संपत्ति पर उनका कोई भी अधिकार नहीं होता है। पारिवारिक मामलों तथा पारिवारिक संपत्ति के मामले में निर्णय करने का कर्ता अर्थात परिवार के मालिक को पूर्ण अधिकार होता है। इस प्रकार के परिवार में सामान्यतः सबसे बड़ा बुजुर्ग परिवार का कर्ता अर्थात मालिक होता है। कभी कभी असाधारण योग्यता वाले किसी छोटे पुरुष को भी कर्ता बना दिया जाता है, परंतु नैतिक दृष्टि से वह अपने को बुजुर्गों के अधीन ही समझता है। परिवार के संचालन तथा संपत्ति पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार उसे ही प्राप्त होता है। वह संयुक्त संपत्ति का स्वामी होता है तथा परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण का भार उसी पर होता है। अपने विवेक के अनुसार संपत्ति के खर्च का उसे अधिकार प्राप्त होता है। कानूनी अथवा अन्य जरूरतों तथा परिवार के हित के लिए वह एक ऋण ले सकता है। संयुक्त परिवार संयुक्त संपत्ति को गिरवी रख सकता है अथवा उसे या उसके एक अंश को बेच सकता है। उपनयन विवाह तथा अन्य धार्मिक संस्कारों और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वह ऋण ले सकता है। परिवार में उसका उच्च स्थान होता है तथा समुदाय के सामाजिक धार्मिक सामुदायिक कार्यों में वह परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है। कर्ता के पास परिवार में उसकी पत्नी का स्थान होता है। परिवार की अन्य स्त्रियों की तुलना में उसका स्थान सर्वोच्च होता है। वे उसी के माध्यम से अपनी बातें कर्ता तक पहुँचाती है। उसके बाद आयु के हिसाब के अन्य पुरुष सदस्य और उनकी पत्नियों का स्थान होता है। लड़कों और लड़कियों की तुलना में लड़कों का स्थान उच्च होता है। अविवाहित लड़कों का परिवार के किसी मामले में कोई हाथ नहीं होता है। माति सत्तात्मक या माति वंशीय संयुक्त परिवार। इस प्रकार के संयुक्त परिवार में परिवार की सत्ता अर्थात उसके संचालन और उस पर नियंत्रण का अधिकार परिवार की सबसे बड़ी स्त्री अथवा किसी स्त्री सबसे बड़ी स्त्री अथवा किसी स्त्री के हाथ में होता है। पारिवारिक सत्ता किसी स्त्री के हाथ में होने के कारण उसे माति सत्तात्मक कहा जाता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर एक पारिवारिक सत्ता स्त्री के हाथ में होती है। नंबर दो, बच्चे माता का वंश नाम ग्रहण करते हैं। नंबर तीन, इसमें स्त्री, उसका पति, उसकी लड़कियां, लड़कियों के पति, उसके अविवाहित लड़के तथा उस स्त्री के अविवाहित भाई होते हैं। लड़कियां अपने पति के घर नहीं जाती हैं, उनके पति ही उनके घर आ जाते हैं। नंबर चार, पुत्र के पिता के परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है। संपत्ति संबंधी अधिकार स्त्रियों को प्राप्त होता है, परंतु ऐसे परिवारों में स्त्री का भाई अथवा बहन का लड़का भी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। सामाजिक सम्मान के पद और उपाधियां भांजे को मिलती हैं। त्रावणकोर कोचीन के राजघराने का उत्तराधिकार राजा के लड़के को नहीं बल्कि उसके बहन के लड़के को मिलता है। मातृसत्तात्मक परिवार का यह अर्थ नहीं है कि पुरुषों की स्थिति नगण्य होती है। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें भी सम्मानित पद प्राप्त होते हैं। पुरुषोचित अधिकार उन्हीं के पास होते हैं। नंबर पाँच, भाई, पुत्र या पति को धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। पुरोहित का प्रधान कार्य स्त्रियां करती हैं। नंबर तीन, धार्मिक कार्यों में छोटी लड़की का सबसे अधिक महत्व होता है। माँ की संपत्ति का अधिकतर भाग उसे ही मिलता है। संतानों पर पिता का नहीं माता का अधिकार होता है। नंबर आठ, संपत्ति पर परिवार की सबसे बड़ी स्त्री का अधिकार होता है। मालावार के नायरों तथा खासी गारो जनजातियों में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार मिलते हैं। पैतृक संपत्ति में अधिकार के आधार पर भेद। पैतृक संपत्ति में अधिकार के आधार पर संयुक्त परिवार के दो भेद किए गए हैं। नंबर एक, मिताक्षर संयुक्त परिवार। नंबर दो दाय भाग संयुक्त परिवार। मिताक्षरा संयुक्त परिवार ज्ञानेश्वर द्वारा 1070 से 1020 ईस्वी के बीच याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई मिताक्षरा टीका के संपत्ति संबंधी सिद्धांतों पर आधारित संयुक्त परिवार को मिताक्षरा संज्ञा प्रदान की गई है। बंगाल, असम को छोड़ शेष भारत में इसी परिवार के संयुक्त परिवार मिलते हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। संयुक्त परिवार को अविभक्त पैतृक संपत्ति पर सभी साझेदारों का संयुक्त स्वामित्व होता है। जन्म लेते ही व्यक्ति को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। नए लोगों को जन्म लेने तथा परिवार के सदस्यों के मरने से उत्तराधिकारियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। साझेदारों का कोई निश्चित हिस्सा नहीं होता। यदि किसी हिस्सेदार के मरने के बाद उसके पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र नहीं होते हैं तो उसका हिस्सा अन्य साझेदारों में बढ़ जाता है। नंबर चार, हिस्सेदारी की तीन पीढ़ी तक के लोग ही उसके उत्तराधिकारी होते हैं। स्त्री को पुरुष के बराबर उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होता है। कानूनों द्वारा अब स्थिति बदल ली गई है। नंबर छह, संपत्ति के विक्रय पर कर्ता का सीमित अधिकार होता है। वह कानूनी और धार्मिक कार्यों तथा ऋणों के भुगतान के लिए उसका विक्रय कर सकता है। नंबर सात, हिस्सेदार अन्य हिस्सेदारों से पूछे बिना अपने हिस्से का विक्रय नहीं कर सकता है। दाय भाग संयुक्त परिवार। जीवूत वाहन दास 1090 से 1130 के बीच लिखित दाय भाग ग्रंथ के सिद्धांतों पर आधारित संयुक्त परिवार को दाय भाग संयुक्त परिवार कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार बंगाल और आसाम में होते हैं। इनसे जन्म से ही नहीं बल्कि पिता के मरने के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार होता है। दाय शब्द की विपरीत व्याख्या करने के कारण दोनों संप्रदायों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर मतभेद है। मिताक्षरा संप्रदाय के अनुसार दाय भाग दाय वह की संपत्ति है जिससे स्वामी के साथ संबंध मात्र से ही व्यक्ति का हिस्सा हो जाता है। जन्म से ही व्यक्ति की संपत्ति में हिस्सा हो जाता है। दाय भाग संप्रदाय के अनुसार दाय शब्द की उत्पत्ति दो धातु से हुई है, जो दिया जाए वह दाय है। इसके अनुसार जब व्यक्ति अपनी संपत्ति का अधिकार छोड़ता है तभी उस पर दूसरे व्यक्ति अर्थात पुत्र का अधिकार पैदा होता है। दाय भाग संयुक्त परिवार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर एक, पिता के मरने के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। उसके जीवित रहते वह उसके बंटवारे की मांग नहीं कर सकता है क्योंकि उनका उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। नंबर तीन, संपत्ति के विक्रय, दान तथा विनियोग पर पिता का अधिकार असीमित होता है। नंबर चार, इसमें मिताक्षरा की तरह तीन पीढ़ी तक ही उत्तराधिकार का नियम नहीं है। वह बाद के पीढ़ियों के उत्तराधिकारियों को भी मिलती है। नंबर 5, पुत्र के ना होने पर संपत्ति विधवा स्त्री को मिलती है। इस प्रकार दया भाग परिवार में विधवा स्त्रियां भी संपत्ति की उत्तराधिकारी हैं। पैतृक संपत्ति के अधिकार के आधार पर संयुक्त परिवार के ये दो भेद लगभग 1000 वर्ष तक चलते रहे, परंतु 1965 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने इन्हें समाप्त कर दिया है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, उत्तराधिकार संबंधी मिताक्षर और दाय भाग नियम समाप्त कर दिए गए हैं। सभी भागों के हिंदुओं के लिए एक नियम है। नंबर 2, संपत्ति पर हिंदू स्त्रियों को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। हिंदू परिवार की अवधारणा एवं उसके सदस्यों के परस्पर संबंध। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर समावर्तन स्नान कर स्नातक विवाह के योग्य हो जाता था एवं विधिवत विवाह कर गृहस्थ बनता था। ऐसा गृहस्थ धर्मतः काम और संवर्धन कर परिवार का निर्माण करता है। प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राचीन भारत में परिवार का उद्गम स्वरूप एवं आदर्श आदि के विषय में कैसी मान्यताएं थी। उद्गम, परिवार का आदि स्वरूप क्या था, इसका उद्भव कैसे हुआ इत्यादि विषय हमें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। अतीत के इस विषय को कौन जानता है, कौन कह सकता है को श्रद्धा वेद का ई प्रवोचन। ऋग्वेद में गृह गृहपति पति पत्नी जैसे शब्द मिलते हैं। एक ऋचा में कहा गया है जो अपत्नीक है वह अज्ञेय है। इन उद्धरणों से गृह या परिवार के प्रचलन का प्रमाण ऋग्वेद से मिलता है, किंतु इस प्रथा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ इस पर ऋग्वेद में कुछ भी नहीं कहा गया। महाभारत में पुरा काल की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि अति प्राचीन काल में स्त्रियां अनाविता कोष्ठक में नग्न एवं कमाचार बिहाड़ी स्वतंत्र हुआ करती थी। वे कुमारी अवस्था से ही अनेक पुरुषों के पास जाया करती थी, वह उन दिनों अधर्म नहीं था, यही उस समय की परंपरा थी। महाभारत के आगे कहा गया है कि उद्दालक ऋषि के पुत्र श्रेष्ठ केतु ने विवाह की मर्यादा पहली बार स्थापित की। एक बार उनके पिता के सामने उसकी माता को दूसरा ब्राह्मण हाथ पकड़ कर खींचने लगा। श्रेष्ठ केतु ने इसका विरोध किया तो उद्दालक ने इसे सनातन धर्म कहा, इसका समर्थन किया। श्वेत केतु को यह धर्म असहा था, अतः उन्होंने बलपूर्वक समाज में पति पत्नी की मर्यादा स्थापित की। महाभारत में ही दूसरा प्रसंग दीर्घतमा की कथा में मिलता है। दीर्घतमा ने परदोषी नामक पत्नी से कई संतानें उत्पन्न की, किंतु कालांतर में गो पुत्रों से गो धर्म कमाचार सीखा और उस पर खुला आचरण करने लगा। उसके इस विपक्ष मर्यादा कमाचार से ऋषि क्रुद्ध हुए। ऋषियों एवं उसकी पत्नी ने उसे आश्रम से बहिष्कृत कर दिया। अनुनय विनय करने पर भी जब उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं हुई तो उसने कहा, आज से मैं लोक में ऐसी मर्यादा प्रतिष्ठित करता हूँ कि पत्नी को यावत जीवन एक ही पति पर निर्भर कोष्ठक में परायव करना होगा। पति के जीवित या मृत्यु होने पर भी वह दूसरे पति के पास नहीं जा सकती, यदि कोई दूसरे के पास जाएगी तो वह पतित होगी। महाभारत में ही कर्ण मद्र देश में वहाँ स्त्रियों को मद्यपान में नग्न होकर नाचने एवं स्वेच्छा पूर्वक मैथुन का उल्लेख करता है। बाहरी देश की स्त्रियों के बारे में भी यही बात कही गई है। इस प्रकार महाभारत में विवाह पूर्व कमाचार एवं कालांतर में परिवार के गठन का उल्लेख है। यद्यपि ये विवरण परिवार की उत्पत्ति की ओर संकेत करते हैं, पर इन कथाओं की प्रस्तुतियाँ इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। उदाहरण स्वरूप पांडु कुंती को अन्य पुरुष से नियोग की औपचारिकता को प्रमाणित करने के लिए ऐसी कथा कहता है। इसी प्रकार दीर्घतमा की कहानी भी विचित्र वीर की माता सत्यवती को नियोग की आवश्यकता समझने के लिए कही गई है। वस्तुतः पश्चिमी भारत में विदेशी जातियों के आक्रमण से आचारों की शिथिलता संभव थी। यद्यपि अप्रमाणिक होते हुए भी इन प्रसंगों से उस आदिम व्यवस्था का संकेत मिलता है जिनके विकास क्रम में विवाह एवं परिवार का उदय हुआ होगा। वैदिक साहित्य से कमाचार की संपुष्टि नहीं होती। जैसा कि मेयर ने लिखा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं से कमाचार की पुष्टि नहीं होती। प्राचीन आर्यों के भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैलने से पहले व्यवस्थित पारिवारिक जीवन का विकास हो चुका था, अतः कमाचार से परिवार व परिवार के प्रमाण तर्क संगत नहीं है। अमृत तत्व की प्राप्ति। अति प्राचीन काल से आज तक मानव दीर्घ अभ्युदय एवं अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है। नाना प्रकार के रस, रसायन, भस्म, औषधियों का निर्माण व अन्वेषण इसके प्रमाण है। ऋग्वेदिक आर्यों ने भी इस प्रयास के लिए एक नवीन दिशा में कार्य किया। ऋग्वेद की एक दिशा में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि, मैं संतानों के इस अमृत तत्व की प्राप्ति करूं। प्रज्ञे अमृत तत्वम श्याम। अतः उसने संतान के माध्यम से अपने को अमर करने का प्रयास किया, जैसा कि निरुक्त में कहा गया है कि पुत्र के रूप में पिता का ही पुनर्जन्म होता है, क्योंकि पिता के अंग अंग और हृदय से ही पुत्र का जन्म होता है। यद्यपि मृत्यु अनिवार्य है, तथापि व्यक्ति पुत्र व संतति के माध्यम से अपने को अमर रखता है। मनुष्य प्रकृति से ही एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले रह ही नहीं सकता। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है कि आदि काल में आत्मा रूपी पुरुष अकेले था, अकेले वह रमण नहीं कर सकता था, अतः उसने द्वितीय की इच्छा की एवं आत्मा की दो रूपों में विभक्त कर दिया, वही दोनों पति पत्नी हुए। बाइबिल में भी आदम एवं ईव की उत्पत्ति को ऐसी ही कहानी दी गई है। अतः मनुष्य की सामाजिकता में उसे स्त्री का साथ खोजने के लिए विवश किया। नारी के प्रति पुरुष का यौन आकर्षण, प्रेम व सहवास, इन सब से उसे परिवार बनाने के लिए विवश किया होगा। इस परिवार बंधन को पुत्र एवं संतति के बंधन में दृढ़ किया। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पति पत्नी का आधा अंश है, जब तक वह पत्नी नहीं प्राप्त करता, उससे संतति उत्पन्न नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। जब वह पत्नी प्राप्त करता है, उससे संतति प्राप्त करता है, तो वह पूर्ण होता है। कालिदास ने भी कहा है कि बच्चों से धूल धूसरित होने वाले माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। संतान जब पिता के प्रत्येक वस्तु का अनुकरण करता है, तो उसे बड़ा आनंद आता है। यही कारण है कि पुत्र को उससे उत्पन्न या औरस कहा जाता है। मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं संतानोत्पत्ति से संतुष्ट होती हैं। उसे आशा एवं विश्वास रहता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र उसके नाम एवं यश को कायम रखेगा, उसके अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। इन कार्यों से ही परिवार में अस्थायित्व आया होगा। हिंदू परिवार के उद्देश्य। हिंदू धर्म शास्त्रियों के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। यह जीवन उस मोक्ष की प्राप्ति की लीला स्थली है। अतः हिंदू सामाजिक संस्थाओं के विविध अंग, आश्रम, वर्ण, गोत्र, परिवार इत्यादि का गठन उसी लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में किया गया है। इस संदर्भ में याज्ञवल्क ने लिखा है कि इज्जा, आचार, दम, कोष्ठक में संयम, दान, अहिंसा, स्वाध्याय, अमृत, प्रभीत, परम धर्म उसके आत्मदर्शन के लिए होते हैं। परिवार या गृह उद्देश्य की प्राप्ति के आधार या क्षेत्र है। व्यक्ति का पौरुष या आचार बीज है, जिसके संयोग से मोक्ष रूपी सस्य की उत्पत्ति की आशा रहती है। अतः परिवार मोक्ष के लिए आधार स्थल का कार्य करता है। इस आधार स्थल गृह या परिवार का गृहस्थ उन पुरुषार्थों का आचरण करता है, जिनका सैद्धांतिक ज्ञान उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में ग्रहण किया है। हिंदू गृह में चुल्ली, पैसड़ी, उपसकर, ओखल, मुसल एवं जल कुंभ में 5 आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जिन्हें मनु ने सुना एवं कुल्लूक ने इसका भाष्य करते हुए पशुवध स्थान कहा है। इनके प्रयोग से गृहस्थ गृह में चेतन व अचेतन अगणित जीवों जैसे कीट, पतंग इत्यादि की हत्या करता है, जिसके पाप शोधन के लिए उसे ब्रह्मा यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, देव यज्ञ, भू यज्ञ एवं मी यज्ञ जैसे पंच महायज्ञों को संपन्न करना होता है। वेदा अध्ययन, अध्यापन से ब्रह्म यज्ञ, श्राद्ध तर्पण से पृथ्वी यज्ञ, बलि होम से देव यज्ञ, भोजन हवि से भूत यज्ञ, अतिथि पूजन से मी यज्ञ संपन्न होता है। नित्य सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति के लिए गृहस्थ या कुटुम्बी को पंच महायज्ञ करना आवश्यक है, क्योंकि ऋषि, पृथ्वी, देव, भूत एवं अतिथि उसको आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। नंबर 1, अर्थ संवर्धन। गृहस्थ को परिवार में धर्मतः अर्थ एवं काम को संवर्धन करना होता है, किंतु धर्म के सूत्राधार होने के कारण गृहस्थ एवं गृहिणी जिसी देव पिति गृह देव अतिथि तथा भूत्य आदि के भोजन के उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। यद्यपि गृह अर्थ संवर्धन का प्रमुख स्थल माना गया है, पर गृहस्थ को इस दिशा में अनुशासित होना है ताकि उसमें सांसारिक सुख एवं समृद्धि के प्रति त्याग की भावना उत्पन्न हो। इसका प्रशिक्षण घृत होम से प्रारंभ होता है। घृत तत्कालीन जीवन का सबसे मूल्यवान भोज पदार्थ था, जिसे अग्नि पर होम करने की विधा के त्याग विद्या विधा त्याग प्रवृत्ति की प्रतीक है। याज्ञवल के अनुसार गृही को संग्रह नहीं करना चाहिए, वरन उसे शीलोच्छवित्ति का परिपालन करना चाहिए। शीलोक्ष पर भाष्य करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि शस्त्र की लवनी के समय गृही को पूरी सही शस्त्र में उनमें वितरित कर देना चाहिए जिन्हें इनकी आवश्यकता हो, और स्वयं खेत में छिटकी हुई बालियों को एकत्रित कर उन पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि अर्थ संवर्धन परिवार का प्रमुख उद्देश्य है, पर अर्थ त्याग का प्रशिक्षण संन्यास के प्रति रूप अंततः मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रशस्त करता है। नंबर 2, काम संवर्धन। पुरुषार्थों में काम संवर्धन का महत्वपूर्ण स्थान है। काम के महत्व को ऋषियों ने भी समझा था। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्मा के संयोग से उत्पन्न ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति ऋषियों ने काम जनित आनंद के माध्यम से किया है। उपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रियमत्मा से मिलन के क्षण में ब्रह्मा एवं अभ्यांतर जगत को तथस्थ हो जाता है, ऐसी ही आत्मा ब्रह्मा के संयोग के समय ना बाहर को जानता है और ना अंदर को। इस प्रकार ब्रह्मा आनंद की व्यक्ति कामानंद से की गई है। जिसकी काम से परिचित थे, अतः उन्होंने धर्मतः काम संवर्धन की अनुमति प्रदान की, किंतु काम चूंकि अधोगामी प्रवृत्ति है, पंड रूपियों में उसका स्थान है, अतः उसके समायोजन व सूत्रधार के रूप में धर्म को स्थान दिया गया। नंबर 3, गुहा संरक्षण। गुहा सूत्रों में गृह निर्माण के विविध विधान हैं, जो गृह की समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक है, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गृह केवल वर्तमान गृही का ही निवास स्थान नहीं है, वरन पितरों ने इसे प्रदान किया है। पुत्र पक्ष के लिए गृहस्थ इन्हें संरक्षित करता है। गृह विधान में गृही उदुम्बर शाखा से गृह के चारों ओर रेखा खींचते हुए मंत्रोच्चार करता है, जिनमें समृद्धि दीर्घायुष स्थिरता के साथ ही पुत्र एवं वत्स की संरक्षणा की जाती है। उदुम्बर शाखा स्वभावतः ही चतुर्दिक विकसित होती है, जो वंश संवर्धन का प्रतीक है। परिवार में पुत्रों की संप्राप्ति से पितरों को अमरता प्राप्त होती है। अतः ऋग्वेद अथर्ववेद आदि साहित्य में पुत्रैष्ण वितैष्ण एवं लोकैष्ण आर्यों का परम उद्देश्य रहा है। पाणी ग्रहण में वर वधु से कहता है कि मैं सुंदर पुत्र के लिए तुम्हारा पाणी ग्रहण करता हूँ। शतपथ ब्राह्मण में पुत्रोत्पत्ति के द्वारा व्यक्ति के पूर्णता का वर्णन है। मनु अस्पष्ट शब्दों में पुत्रोत्पत्ति विवाह का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं। कालिदास के अनुसार रघुवंशी राजा संतान के लिए गृहस्थ होते थे। अंत में पंचकर्मों के सुना पर विविध जीवों को जीवों की हत्या से गृहस्थ के पुनाम नरक में जाने का विधान है, जिससे उसे मुक्ति उस समय मिलती है जब पुत्र पिंड दान करता है। यह मानता इतनी बल पकड़ती गई कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्रों उत्पत्ति अनिवार्य हो गई, क्योंकि वह पुन नाम नरक से त्राण दिलाने वाला था। पुनाम नरकात्रायते इति पुत्र, अतः इसे अनिवार्यता प्रदान करने के लिए त्रिऋण की कल्पना की गई। ये त्रिऋण है, देवऋण प्रतिऋण एवं ऋषि ऋण। इन ऋषि शोध के माध्यम से एक और जीवन के परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति का लक्षण पूर्ण हुआ है, तो दूसरी ओर कुल परंपरा की रक्षा में भी इसका विशेष उपयोग हुआ है, क्योंकि पुत्रों उत्पत्ति के द्वारा पितृऋण यज्ञ हवि के द्वारा देवऋण एवं अध्ययन अध्यापन के द्वारा ऋषि ऋण का शोधन हो सकता था, जिनसे कुल परंपरा कुल धर्म की रक्षा हो सकती थी। इस प्रकार परिवार मात्र गृहस्थ का नहीं, वरन पितरों ने उसे दिया था। पुत्र को इसे सौंपा जाना था। धर्म संवर्धन। नंबर 4, धर्म संवर्धन। हिंदू धर्म शास्त्री के लिए संसार में जीवन एक यात्रा है, जिसमें ना तो व्यक्ति गृह का है ना तो गृह उसका है। वह अन्यत्र से आया है और अन्यत्र अंततः अन्यत्र उसे जाना है जो उसका धाम है। अतः उसे इस संसार में अपने धर्म एवं कर्म का निर्वाह बिना स्वामित्व प्रदान के करना है, स्वामित्व प्रदर्शन के करना है। गृह की संपूर्ण संपत्ति पितरों एवं पुत्र की है, उसकी नहीं। उसकी मात्र संपत्ति उसका धर्म है। जैसा कि मनु ने कहा है कि कुटुम्बी की मृत्यु के पश्चात माता पिता पत्नी पुत्र बंधु बंधव उसकी सहायतार्थ उपस्थिति नहीं होते, अकेले धर्म ही उसके साथ जाता है। अकेले वह उत्पन्न हुआ है, अकेले मरता है, अकेले शुभ कर्मों का पुण्य एवं अशुभ कर्मों का पाप भोगता है। मिट्टी के ढेर की तरह या लकड़ी के लट्ठे की तरह शरीर उसे छोड़ जाती है, केवल धर्म ही उसका अनुसरण करता है। अतः उसे धर्म संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि धर्म के द्वारा ही वह जगत के घोरतम को पार कर सकता था। इस प्रकार धर्म संवर्धन परिवार का उच्च आदर्श था। धर्म संवर्धन का माध्यम यज्ञ था और यज्ञ अपत्नीक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। राम के अश्वेघ में सीता के स्वर्ण प्रतिमा बनी। याज्ञवल्क्य यज्ञ के लिए दूसरी पत्नी का उपदेश देते हैं। कालिदास यज्ञ के लिए शिव विवाह का उल्लेख करते हैं। अतः अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें धर्म संवर्धन परिवार में ही संभव है, किंतु ज्ञान कांड के उदय एवं कर्म कांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण करने का सब कुछ धर्म शास्त्रियों ने सुझाव दिया, तो सबर ने इसका तीव्र विरोध किया। उसने कठोर शब्दों में आलोचना करते हुए लिखा है कि ऐसे लोग अपने नपुंसकता छिपाने के लिए दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य का वर्णन करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का आधा भाग कहा है। बिना पत्नी के पति पूर्ण नहीं होता है और अपूर्ण पुरुष धर्म संवर्धन नहीं करता। इस प्रकार धर्म संवर्धन के लिए परिवार की अनिवार्यता स्पष्ट है। निष्कर्ष। अंततः निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि परिवार धर्म शास्त्र अर्थशास्त्र और काम शास्त्र प्रयोग स्थल है। अग्नि गृह का स्वामी है, जो सर्वदा गृहस्थ के प्रत्येक धर्म एवं कर्म का साक्ष्य है। वह परिवार के सदस्यों को उनके धर्म एवं कर्म के अनुरूप प्रोत्साहन निर्देशन एवं आशीष वचन देता है। वह प्रति भूत व देवों के माध्यम का कार्य करता है। वह गृह में देव प्रतिनिधि है, जो दिव्य तथ्यों को मानव व मानवीय तथ्यों को देव के समक्ष प्रस्तुत करता है। अतः वस्तु अग्नि ही गृह स्वामी है। गृहस्थ को अलिप्तत्व एवं संन्यास वृत्ति से जीवन निर्वाह करना है। उसके लिए संसार क्षण भंगुर है, एक कर्म भूमि है, जिसमें उसे धर्म एवं कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के पद पर अग्रसर होना है। प्राचीन भारत में पति पत्नी संबंध। शतपथ ब्राह्मण में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में मानव की वह उत्कंठा जिसमें वह अपने दूसरे सहचर की कामना करता है, इसका स्पष्ट प्रमाण है। रामायण में वशिष्ठ ने सीता को समझाया कि पत्नी उसकी आत्मा है, जिससे वह विवाह करता है। यह पति पत्नी का समभाव संपूर्ण भारतीय साहित्य में उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि पति पत्नी बिना अलग हुए पूरी आयु का भोग करे। मनु ने स्पष्ट शब्दों में दोनों के परस्पर संबंध को अमरणांतक कहा है। आगे उन्होंने कहा, एक बार जब वे विवाह सूत्र में बंध जाते हैं तो उन्हें सर्वदा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रियों ने एक पत्नी व्रत एक चारित्र की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कालिदास ने रघुवंश में अज की कथा के माध्यम से एवं वाल्मीकि ने रामायण में राम की कथा के माध्यम से एक पत्नी व्रत को स्पष्ट किया। मनु याज्ञवल्क्य जैसे धर्म शास्त्रियों ने भी पत्नी को प्रसन्न रखने व आदर करने का निर्देश दिया। महाभारत में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अप्रिय वक्ता पत्नी को भी बुद्धिमान पति अप्रिय वचन नहीं बोलते, क्योंकि उसे पति से रति प्रीति एवं धर्म की प्राप्ति होती है। मनु के अनुसार पति को पत्नी की युवावस्था में उसी प्रकार रक्षा करना चाहिए जैसे कुमारावस्था में पिता रक्षा करता है एवं वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करेंगे। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति अस्थिवरे पुत्रान। पति को भर्ता कहा गया है क्योंकि वह पत्नी का भरण करता है। उसे पति कहा गया क्योंकि वह पत्नी की रक्षा करता है। महाभारत के अनुसार जब वह इन दोनों कार्यों को संपन्न नहीं करता तो उसका भर्ता व पति का महत्व समाप्त हो जाता है। यह धर्म सनातन है क्योंकि पत्नी की रक्षा के द्वारा पति अपने पुत्रों की रक्षा करता है। पत्नी को जाया कहा जाता है क्योंकि उससे पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। पत्नी की रक्षा के द्वारा गृह लक्ष्मी की रक्षा होती है। जब गृह लक्ष्मी को कष्ट होता है तब गृह नष्ट हो जाता है। पत्नी धर्म अर्थ काम एवं एक सीमा तक मोक्ष का भी साधन है। अतः क्रोध में भी पत्नी से कष्टकार व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि सुख समृद्धि धर्म सभी पत्नियों पर ही निर्भर है। प्राचीन भारतीय समाज में पिता का स्थान। प्राचीन हिंदू परिवार में पिता का स्थान सर्वोपरि था। वह परिवार के लिए आदर्श था। उसकी आज्ञा की अवहेलना कोई नहीं कर सकता था। माता पिता के सर्वोच्च स्थान को महत्व देते हुए हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता का ऋण व्यक्ति जीवन भर नहीं चुका सकता। राम ने पिता की आज्ञा को सिरेधार करके 14 वर्ष तक वन में जीवन व्यतीत किया था। भीष्म पिता की आज्ञा मानकर जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। प्रहलाद ने पिता की आज्ञा से आग में जलना स्वीकार कर लिया। इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि पिता का स्थान हिंदू समाज में सर्वोच्च था। महाभारत में पिता के वचन का पालन करने का उपदेश देते हुए कहा गया है कि पिता धर्म है, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप है, पितरी प्रीति मां पन्ने सर्वा पीड़ान की देवता। अर्थात पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। पिता के प्रसन्न होने पर ही सब देवता प्रसन्न होते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से पता चलता है कि हिंदू समाज में पिता का स्थान अतुलनीय था। वह सामाजिक व्यवस्था शिखर पर विराजमान था। पिता का स्थान। पृथ्वी शब्द की उत्पत्ति पा धातु से हुई है जिसका अर्थ रक्षा करना या संचय करना। अतः पिता का कार्य है अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करना। यह रक्षा वह दो दृष्टियों से करता है। नंबर एक सामाजिक मर्यादा के संबंध में, नंबर दो शारीरिक विकास के संबंध में। इसलिए सभी प्राचीन ग्रंथों में पिता के लिए परिवार में बड़े ही सम्मादृत स्थान का वर्णन। ऋग्वेद के अनुसार वह सभी भलाइयों और दया का प्रतीक है। राम ने अपनी माता से पिता की महिमा बताते हुए कहा है कि पिता का स्थान देवताओं से भी श्रेष्ठ है और उनकी आज्ञा देव आज्ञा है। पिता ही पुत्रों को प्रारंभिक शिक्षा देता है। जब वह स्वयं किसी विषय का पारंगत विद्वान होता था तो उस विषय की विशिष्ट शिक्षा भी वही देता था। अरुणेय स्वयं बड़ा विद्वान था, अतएव उसने अपने पुत्र श्वेत केतु को भी विद्वान बना दिया। मनुस्मृति के अनुसार पिता मूर्ति प्रजापते अर्थात पिता अपनी संतान के लिए आदर्श होता है। तैतरी उपनिषद में समावर्तन समारोह के अवसर आचार्य स्नातकों को उपदेश देते हुए कहते हैं, माति देवो भव पिति देवो भव, अर्थात पिता और माता को देवता के समान मानो। हिंदू परिवार में पिता की सर्वोच्च स्थिति बनाए रखने के लिए सबको निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। नंबर एक दंड देने का अधिकार। ऋग्वेद में एक कथा ऋज राष्ट्र की है। उसके पिता ने ऋज राष्ट्र को भेड़ चराने के लिए भेजा था, परंतु बहुत सी भेड़े उसके गिरोह से गायब हो गई। इसके लिए उसके पिता ने उसे अंधा बना दिया। ऋज राष्ट्रम तम पिता अंधम चकार। इस कथा के आधार पर जिमर महोदय ने पिता द्वारा दंड देने के अधिकार को सिद्ध किया है, पर मैकडॉनल्ड तथा कीथ ने जिमर का पिता के अधिकार संबंधी अनुमान की यह सीमा इस अकेली घटना पर स्वीकार करना उपयुक्त नहीं कहा है। डॉक्टर काणे के अनुसार पिता को इस प्रकार के दंड का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। भारत में चूंकि पुत्र पृथ्वी यज्ञ का परिणाम होता था इसलिए उसे इस प्रकार के अधिकार से नहीं बांधा गया है। नंबर दो आज्ञा देने का अधिकार। पिता कोई भी आज्ञा अपने पुत्रों को दे सकता था और पुत्र बिना अवरोध के उसे स्वीकार करता था। उदाहरणार्थ राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में एक ही संपत्ति है कि पितरोर वचने व्यवस्थित उसको ज्यो का त्यो पालन करना धर्म था। भीष्म ने अपने पिता से प्रतिज्ञा किया था कि कभी विवाह नहीं करेगा, वह कभी विवाह नहीं करेगा, अतएव उन्होंने जीवन पर्यंत विवाह ही नहीं किया। मनु ने कहा है कि गुरु राज्ञा परो धर्म है, यहाँ गुरु से अभिप्राय है माता पिता एवं गुरु से। आज्ञा पालन की महत्ता भारतीय समाज में इतनी अधिक स्वीकार की गई है कि इससे व्रत होने वाले व्यक्तियों को हे दृष्टि से देखा जाता है। नंबर 3, पीटने का अधिकार। पिता को पुत्र को पीटने का अधिकार प्राप्त था। इस संबंध में उसके अधिकार का यह कारण हो रहा होगा कि पुत्र का प्रजनन एवं पोषण पिता ही करता था। ऋग्वेद में एक स्थल पर वर्णित है कि पिता अपने जुआरी बेटे को दंड देता है। महाभारत में कहा गया है कि पिता को अधिकार है कि अपने पुत्र को पलाश के दंड से अथवा रस्सी से ठीक रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी दंड दे, परंतु केवल पीठ पर ही मारने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि मुंह पर मारने से उतावलेपन में यदि कहीं अनुचित स्थान पर चोट लग जाए तो उसका व्यक्तित्व ही बिगड़ जाएगा। नंबर 4, दान देने तथा विवाह करने का अधिकार। धर्म शास्त्रकारों ने पिता को अधिकार दिया है कि वह अपने द्वारा प्रजनित बालक को चाहे जिसे भी दान दे दे। पिता को ही एकमात्र वह अधिकार है कि अपने पुत्र को जिसे उचित समझे गोद दे सकता है। पिता की मृत्यु हो गई हो और माता को दृढ़ विश्वास हो कि उसके पति यदि जीवित रहते हैं तो उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, इस प्रकार पिता के दान संबंधी अधिकार की बात स्पष्ट हो जाती है। हिमालय ने अपनी पुत्री गंगा को देवताओं के मांगने पर दे दिया था, उसी ने उमा का विवाह रुद्र के साथ किया था। इसी प्रकार कुछ नाम की कन्याओं से जब वायुदेव ने विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्होंने कहा कि पिता हमारे प्रभु हैं, वे ही जिसको हमें देंगे वही हम लोगों का पति होगा। इससे स्पष्ट है कि पिता को ही अधिकार था कि वह कन्या का विवाह अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी से करे। नंबर 5, संपत्ति का अधिकार। पिता अपने जीवन काल में परिवार के संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी होता है। वह पूर्वजों द्वारा प्राप्त संपत्ति का संरक्षक होता है तथा अपनी अर्जित संपत्ति का स्वामी होता है। बालक, नौकर और स्त्री जो कुछ भी कमाते हैं वह उसी का होता है, उसके जिसके अधीन वे होते हैं। इसलिए मनु, नारद, मिताक्षरा, महाभारत आदि सभी ने एक स्वर से कहा है, भार्या पुत्रस्य दासस्य त्रय एवाधन स्मृता यते समधि गच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्। कुछ ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे रोमन संविधान का अधिनियम। यह छूट दी गई है कि परिवार के अभ्युदय के लिए तथा धार्मिक कार्यों के लिए पैतृक संपत्ति का जिसका वह संरक्षक है चाहे जिस प्रकार उचित समझे खर्च करे, साथ ही सब अर्जित संपत्ति पर भी उसका पूर्ण अधिकार स्वीकार किया गया है। डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय के शब्दों में जहाँ तक सिद्धांत में बंटवारे का प्रश्न है, भारतीय विचारकों ने पारिवारिक संपत्ति पर जन्मना स्वत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस सिद्धांत के अनुसार गर्भ से ही परिवार की संपत्ति में बालक का अधिकार भारत में स्वीकार कर लिया जाता है, परंतु फिर भी व्यवहार में यह वर्जित है कि वह तब तक बंटवारा कराने के लिए उद्यत न हो जब तक पिता जीवित हो। जो व्यक्ति पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति में बंटवारे का सवाल उठाता है उसे पिता के श्राद्ध में भी भाग लेने से वर्जित किया जाता है। पुनः व्यक्तिगत संपत्ति को भी इस समय स्वीकार किया गया है। नारद, विष्णु, कौटिल्य सभी ने इस प्रकार की संपत्ति को स्वीकार किया है। इस संपत्ति से हमारा अभिप्राय है वह धन जो व्यक्तिगत परिश्रम से कमाया गया हो। नंबर 6, बेचने और छोड़ देने का अधिकार। कौटिल्य के अनुसार मलेच्छों को पुत्र विक्रय में भले ही पाप ना लगे पर आर्यों को दास कोष्ठक में विक्रय नहीं किया जा सकता। गौतम ने तो पुत्र तथा पत्नी को बेचने वाले पर दंड का विधान किया है। विष्णु ने उसे जाति च्युत बताया है। मनु ने अपवित्र का उल्लेख किया है, परंतु छोड़ने वाले पिता के लिए दंड का भी विधान बताया है। अतएव पिता को पुत्र को बेचने और छोड़ने का अधिकार था, किंतु ये दोनों ही निंदित थे, अतएव इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तभी जयमनी ने कहा कि विश्वजीत यज्ञ में परिवार का सर्वस्व पुरोहित को दे दिया जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि इतना दे दिया जाए कि पुत्र और स्त्री भूखे मरे। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि तुम दान दे सकते हो, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि पुत्र और स्त्री भूखे मरे। इसलिए नारद ने इस प्रकार के दान को निंदित बताया है। पिता के कर्तव्य। नंबर एक, पालन एवं संरक्षण करना। पिता का कर्तव्य था कि वह अपने संतान का पालन करे और जब तक वह अविवेकी रहे तब तक वह उनका संरक्षण करे। यह पिता के पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम से ही संभव है। रामायण से विदित होता है कि पुत्र प्रेम के कारण ही दशरथ राम के वनवास के समय अचेत थे तथा उन्होंने अपना प्राण भी त्याग दिया। जात कर्म पुंसवन आदि संस्कारों को बड़े ही उत्साह के से मनाया जाता है। इस प्रकार के प्रेम का द्योतक है उत्साह से मनाया जाना। इस प्रकार के प्रेम का द्योतक है इसको और गुरुतर बनाने के लिए कि पिता अपने द्वारा प्रजनित बालक को उचित संरक्षण प्रदान करे। किसी ऋण का बोझ पिता पर लादा गया है, वह बालक का केवल प्रजनन मात्र ही ना करे परंतु उसके साथ उसका भरण पोषण करे एवं उपयुक्त शिक्षा दे। लड़कियों का संरक्षण पिता अपने घर स्वयं करता था। नंबर दो, बालक का विवाह करना। लड़के और लड़कियों दोनों का विवाह करना पिता का ही कर्तव्य था। लड़की के लिए उपयुक्त वर खोजना और रीति रिवाज द्वारा विवाह करना पिता का दायित्व था। इसी से हिमालय ने उमा का विवाह रुद्र के साथ किया तथा जनक ने सीता का विवाह राम के साथ तय करके दशरथ को इसकी सूचना भेजी थी। मरु ने विवाह की आयु आदि के संबंध में व्याख्या करते हुए कहा है कि यदि शादी अवधि से देर निश्चित हो तो पिता ही उसका दोषी होता है। यही बात याज्ञवल्क्य आदि ने भी कहा है। नंबर तीन, भरण पोषण करना। धर्म शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि बालक चाहे वैध हो अथवा अवैध, उसका प्रजनन पिता से हुआ है, अतः उनके पोषण का कर्तव्य पिता का ही है। मनु के अनुसार चाहे अनुचित प्रकार के सैकड़ों कार्य भले ही पिता को करना पड़े, फिर भी उसका धर्म है कि वह उसके पिता द्वारा भी अपने बालक का पोषण करे। अवैध संबंध का दंड माता पिता को मिलना चाहिए, निरीह बालक को नहीं। संभवतः इसी पुत्रों को बंटवारे के संबंध में प्राचीन हिंदू विधि में 13 प्रकार के पुत्रों के भरण पोषण का अधिकार किया गया है। निष्कर्ष। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से पता चलता है कि हिंदू समाज में पिता का स्थान अतुलनीय था। वह सामाजिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान था। हिंदू परिवार में पति का स्थान। हिंदू परिवार प्रणाली में पति व पत्नी दोनों का पर्याप्त महत्व है। पति का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। सहस्राब्दियों के व्यतीत हो जाने पर भी आज पति का स्थान ज्यों का त्यों बना हुआ है। वह परिवार रूपी रथ का चक्का है। उसकी अनुपस्थिति में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादित नहीं किया जा सकता है। दोनों का व्यवहार एक दूसरे के साथ मित्रता का था। प्राय लोगों ने समझने में यह भूल की है कि यह सम्मानीय स्थान पति को अनादिकाल से दिया जा रहा है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। पति को यह स्थान हिंदू समाज में धीरे धीरे प्राप्त हुआ है। उसका विकास कुछ युगों के द्वारा संभव हो सका है। नंबर एक, सखा युग। यह युग वैदिक युग से आरंभ होकर 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। नंबर दो गुरु युग। यह 600 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईसा पूर्व तक रहा। कुछ समय तक पति को गुरु बनने का कार्य भी संभालना पड़ा। ऐसी दशा में पति तथा स्त्री में जो मित्रता का भाव था उसका अंत हो गया। पति का स्थान समाज में ऊंचा हो गया और पत्नी की दशा गिरती चली गई। नंबर तीन, देवता युग। यह युग 200 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा। पति देवता के समान समझा जाने लगा। इस समय पति को स्त्री के ज्ञान वृद्धि में भी सहायक बनने की आवश्यकता पड़ी। अब पति समानता के स्थान से उठकर ऊपर पहुंच गया। जब वह गुरु का कार्य करने लगा तो परिवार में उसकी मर्यादा बढ़ गई। सर्वप्रथम शंख ऋषि ने कहा, पति के कोढ़ी पतित अंगहीन या बीमार होने पर भी पत्नी पति से द्वेष ना करे, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति देवता के समान है। मनु ने भी इस बात का समर्थन किया है। रामायण में पति को देवता के समान माना गया है। इस अवस्था में पति राजा के समान निरंकुशता का व्यवहार करने लगा। अपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार वह घर में वैसा स्वतंत्र है जैसे राष्ट्र में राजा। हिंदू परिवार व्यवस्था में पति के अधिकार। पति के अधिकार बहुत व्यापक थे, जिनमें कुछ अधिकार निम्नलिखित हैं। दंड देने का अधिकार, पति पत्नी अथवा संतानों को दंड दे सकता था, लेकिन शास्त्रकारों ने इसको गर्हित माना है। पत्नी को कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, उसे शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। कौटिल्य ने पत्नी दंड पर पति को आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया है। नंबर 2, पुनः विवाह करने व पत्नी के त्याग का अधिकार। पत्नी को त्याग कर दूसरा विवाह करने की परंपरा हिंदुओं में वर्तमान थी। पत्नी की त्याग उसे बंध्यापन के आधार पर अथवा व्याभिचारिणी करार करने के आधार पर ही हो सकता था। मनु और कौटिल्य दोनों ने इसको वैध माना है। इसके विपरीत पत्नी को भी पति त्यागने का अधिकार प्राप्त था। वह शराबी, जीवाणी, रोगी, क्रोधी अथवा पर स्त्रीगामी पति को त्याग सकती थी। नंबर 3, पत्नी तथा पुत्र को बेचने अथवा उधार देने का अधिकार। हिंदू ग्रंथ में इस प्रकार के वर्णन पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि संतानों के क्रय विक्रय के साथ साथ पत्नी को बेचने की प्रथा भी प्रचलित थी। राजा नल से अपनी पत्नी दमयंती को विशिष्ट ऋषि को दान कर दिया था, लेकिन भारतीय शास्त्रकारों ने यह बात ठीक नहीं लगी थी, अतः इसकी सर्वत्र निंदा की गई है। नंबर 4, हत्या करने का अधिकार। स्त्री को हत्या करने का अधिकार बहुत सी जातियों में विद्यमान था, पर हिंदू मत सदैव इसका विरोधी रहा। यहाँ तक कि व्याभिचारिणी होने पर भी हत्या की मनाही थी। पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य। पति अपनी पत्नी के प्रति निम्नांक कर्तव्यों का पालन करता है। नंबर 1, रक्षा का कर्तव्य। पति का कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार के संकट से स्त्री पत्नी की रक्षा करना। महाभारत में इस बात का उल्लेख आया है कि आपत्ति के लिए धन बचाना चाहिए तथा धन से स्त्री की रक्षा करना चाहिए। जो लोग स्त्री की रक्षा नहीं करते हैं, वे नरक में जाते हैं। स्मृतिकारों ने भी पत्नी की रक्षा के बारे में लिखा है, यदि पत्नी की रक्षा पति द्वारा असंभव हो जाती है तो पत्नी दुराचारी होकर वर्णसंकर संतान उत्पन्न करने लगती है। मनुस्मृति में लिखा है कि मनुष्य अपनी पत्नी की रक्षा, अपने पुत्र, चरित्र, कुल, आत्मा तथा धर्म की रक्षा करता है। प्राय प्राचीन कालीन ग्रंथों के प्रणेता सभी इसी बात का मोदन करते हैं। नंबर 2, भरण पोषण करना। पति पत्नी को एक अच्छी तथा चरित्रवान स्त्री के रूप में स्वीकार करता है। जिस समय विवाह होता है, उस समय पति एक मंत्र के द्वारा यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं पत्नी का पोषण करूंगा। पति या भर्ता का अर्थ यही है कि भरण पोषण करना। महाभारत में लिखा है कि वह पुरुष पति नहीं है जो अपनी पत्नी का पोषण नहीं करता। मनुष्य ने भी साध्वी स्त्री के भरण पोषण का भार पति पर ही डाला है। नंबर 3, एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा। भारतीय ग्रंथों में यह समझाया गया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पुरुष को एक पत्नी के साथ ही संबंध बनाए रखना चाहिए, वरना पत्नी भी बुरे विचार ग्रहण करने लगती है। रामायण में राम सीता की कथा इस तथ्य को आदर्श रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वात्स्यायन ने अपने काम सूत्र में भी एक पत्नी व्रत की बड़ाई की है। विवाह के अवसर पर सप्तपदी नामक एक अनुष्ठान होता है, इसमें पति तथा पत्नी के पारस्परिक सद्व्यवहारों की कल्पना की जाती है। नंबर 4, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास ने लिखा है कि पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। जो लोग पत्नी को गाली देते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। अतः पत्नी पति को पत्नी के लिए गाली या बुरे वचन भी नहीं कहने चाहिए। मनु ने लिखा है, जिन स्थानों पर स्त्रियां पूजित होती हैं, वहां देवता निवास करते हैं। यत्र नारयः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियां पूजित नहीं होती हैं, वहां कोई भी धार्मिक कार्य सफल नहीं होता। स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती है। मनु के अनुसार जिस कुल में पति पत्नी से तथा पत्नी पति से संतुष्ट रहते हैं, वहां सदा शुभ तथा कल्याण की वर्षा होती रहती है। परिवार में पत्नी का स्थान। हिंदू परिवार व्यवस्था में पत्नी का अधिकार पिता के समान ही अति उच्च था। वह घर की रानी थी। वैदिक युग में बिना पत्नी की उपस्थिति के कोई कार्य नहीं हो सकता था। यज्ञ करते समय भी पत्नी के अनेक रूप हैं। वह माता है, बहन है, प्रेमिका है, चिर संगनी है। नारी के अभाव में पुरुष अधूरा है, क्योंकि वह अकेले सृष्टि नहीं मनु ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस प्रकार भारतीयों का आदर्श नारी के प्रति ऊंचा था, परंतु मध्यकालीन भारत में नारी पर जघन्य अपराध किए गए और उसकी महानता पुरुष की पाशविकता की तृप्ति तक सीमित होकर रह गई। आज पश्चिम में नारी स्वाधीनता के नाम पर उसको केवल विलास की वस्तु बनाकर रख दिया गया है। भारत में नारी की स्थिति अत्यधिक दयनीय है, उसके अधिकार भी सीमित रह गए हैं। यहाँ हम नारी के अधिकारों का वर्णन करेंगे। पत्नी के अधिकार नंबर एक, भरण पोषण का अधिकार नंबर दो, पुरुष को काम सुख प्रदान करने का अधिकार नंबर तीन, संपत्ति का अधिकार नंबर चार, गृह सामनी के रूप में अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ साथ कुछ आवश्यक कर्तव्य भी निम्नलिखित हैं। नंबर एक, घर की व्यवस्था करना। पत्नी घर की व्यवस्था करती है, बच्चों का पालन करती है, ससुर तथा सास को आराम देती है, पति की सेवा करती है। इस प्रकार पूरे पारिवारिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। नंबर दो, आत्म संयम रखना। पत्नी को अपने पति के प्रति वफादार होना चाहिए, पर घर पर शीघ्र लौटना चाहिए, पर पुरुष के वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, अपनी मर्यादा बनाए रखना चाहिए। नंबर तीन, पति की सेवा करना। यह पत्नी का प्रधान कर्तव्य माना जाता था। पुराणों में लिखा है कि पत्नी की पूजा, व्रत, तप, यज्ञ आदि सब कुछ पति की सेवा है। जो पत्नी पति की सेवा नहीं करती वह नरक में जाती है। नंबर चार, पति की आज्ञा का पालन करना। पति की आज्ञा का पालन करना भी पत्नी का कर्तव्य माना जाता था। पुराणों में पतिव्रता पत्नी की कथाएं भरी पड़ी हैं। पति की आज्ञा मानकर पत्नी अन्य पुरुषों से नियोग स्थापित करती थी और इस प्रकार पुत्र प्राप्त करती थी। पति की आज्ञा का पालन करना पति का अनिवार्य कर्तव्य है। हिंदुओं के उपरोक्त कर्तव्यों के अलावा और कई कर्तव्यों की तरफ इंगित किया गया है। नंबर एक, पत्नी को सदा हसमुख होना चाहिए। नंबर दो, उसे घरेलू कार्यों में दक्ष होना चाहिए। नंबर तीन, घर की सफाई आदि पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर चार, बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। नंबर पाँच, मित्रव्ययी होना चाहिए। नंबर छह, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार संघ ने भी स्त्री के निम्नलिखित कार्य बतलाए हैं। आज्ञा के अनुसार घर के बाहर ना निकलना। नंबर दो, जल्दी ना चलना। नंबर तीन, सन्यासी, बूढ़े, व्यापारी और वैद्य को छोड़कर किसी से बात नहीं करना। नंबर चार, नाम ही ना दिखलाना। नंबर पाँच, थकने तक साड़ी पहनना। नंबर छह, स्तन ना दिखाना। नंबर सात, मुंह ढके बिना ना हंसना। नंबर आठ, पति से घृणा ना करना। नंबर नौ, वशीकरण करने वाली तथा वैश्याओं आदि से ना मिलना। ये प्रधान कर्तव्य माने जाते थे। ब्रह्मा पुराण के सृष्टि खंड में स्त्री के कर्तव्यों का वर्णन अति सुंदर ढंग से किया गया है। कहा गया है कि वही पतिव्रता है जो कार्य में दासी के समान, काम सुख में वैश्या के समान, खिलाने में माता के समान, निपत्ति में उत्तम परामर्शदाता के समान हो। निष्कर्ष, स्त्री के कर्तव्यों का अध्ययन करने से पता चलता है कि उसके कर्तव्य असीमित तथा अधिकार सीमित थे, पर हिंदू शास्त्र में नारी की महानता के पोषक रहे हैं। नारी का जो आदरपूर्ण स्थान वैदिक काल में था वह निरंतर गिरता गया और पौराणिक काल में उसके अधिकारों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया। वास्तविकता तो यह है कि स्त्री पुरुष के अधिकार व कर्तव्य समान होने चाहिए। पुत्र के प्रकार, प्रथम में पुत्रों का महत्व सर्वाधिक है। इसी कारण जब पिता या माता अपनी अस्वस्थता के कारण संतति प्रजनित करने में असमर्थ हो जाता था, तब विभिन्न उपाय एवं रीतियों से दूसरे के पुत्रों को अपना पुत्र अपना लेता था। डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय के शब्दों में, यहाँ दूसरे की सीमा में प्राय अन्य परिवार के बालक को सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु कभी कभी इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर कि ऐसे बालक में प्रीति अथवा मातृ पक्ष का रक्षा भाव होता है, पिता पत्नी द्वारा दूसरे के सहयोग से उत्पन्न पुत्र को भी अपना लेता था। दूसरे के सहयोग से उत्पन्न पुत्र से अभिप्राय है उन पुत्रों से जो या तो स्त्री के कन्या रहने पर ही उत्पन्न हो चुके हो या विवाह होने के बाद रुग्ण अथवा असक्त पति पत्नी को प्रेरित करके दूसरे से पुत्र उत्पन्न कराया हो। इस प्रकार पुत्रों की संख्या भारतीय धर्मशास्त्रों में 12 माने गई है, जिनमें केवल एक ही पुत्र ऐसा है जो पिता और माता के धर्म संबंध से उत्पन्न होता है और शेष में कुछ केवल माती पक्ष से संबंधित है और कुछ दूसरे परिवार से। इन पुत्रों के परिवार प्रकार में धर्मतः औरत को ही मान्यता स्वीकार की जा सकती है, पर मनु की दृष्टि में यदि औरत से पुत्र न उत्पन्न हो तो क्रिया की लोप की संभावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इसलिए प्रतिनिधि पुत्रों को स्थान दिया गया है। अपस्तंभ के अनुसार यदि उपलब्ध न हो तो जैसे यज्ञ में तेल को ही घी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार औरत के पुत्रिका पुत्र के अभाव में 11 दूसरे पुत्रों की मान्यता स्थापित की गई। लेकिन पुत्रों के प्रकारों की इतनी लंबी तालिका बनाने की आवश्यकता पर डॉक्टर जॉली ने प्रकाश डालते हुए कहता है कि इसके दो मूल कारण थे, अधिक संख्या में शक्तिशाली पुत्रों को प्राप्त करना तथा पितरों के पिंडवान की व्यवस्था करना। हरिदत्त वेदालंकार ने इन तर्कों की विद्वतापूर्ण आलोचना करते हुए यह सिद्ध किया है कि अधिक पुत्रों के लिए बहुपत्नी प्रथा का चलन था तथा पिंडदान के लिए इनमें से अधिक अयोग्य थे, जैसे पुनर्भावकों को श्राद्ध में ही नहीं बुलाया जा सकता था। कुछ लोगों ने यौन संबंध की शिथिलता के कारण पुत्रों के प्रकारों की कल्पना की है। हरिदत्त वेदालंकार के अनुसार इस वर्गीकरण के दो कारण थे, एक शास्त्रकारों की पांडित्यपूर्ण मीमांसा तथा दूसरे माता पिता के भूल के कारण निर्दोष शिशुओं के पालन पोषण की चिंता, जैसे गुढ़ सहोड़ तथा कानिन पुत्र आदि। किंतु इसके साथ यह भी एक कारण रहा होगा कि बहुपत्नी रखने की अपेक्षा अथवा अपने शारीरिक दोष के परिहार के लिए विभिन्न प्रकार के दूसरे के पुत्रों को अपना पुत्र बनाने की विधि अपनाई गई। देवल के अनुसार इनकी संख्या 13 है और इन्हें निम्न कोटियों में विभाजित किया है, नंबर 1 दत्तक, कृत्रिम कृत, स्वयंदत्त और अपवित्य। यह अवैधानिक पुत्र हैं जिसका संबंध ना माता से होता है और ना पिता से, बल्कि दूसरे परिवार से, जो विभिन्न रीतियों द्वारा अपना लिए जाते हैं। पुनर्भाव और सौध ठीक उसी प्रकार से वास्तविक पुत्र हैं जैसे औरस और दौहित्र, पर वह अपनी स्थिति में इसकी अपेक्षा नीचे होते हैं। नंबर 3 गूढ़ज सहोड़ तथा कानिन पुत्र भी इसी प्रकार के हैं, पर इनका स्तर कुछ नीचा है। नंबर 4 क्षेत्रज को परज की कोटि में रखा गया है। इस प्रकार का भेद केवल देवल से ही नहीं प्राप्त होता बल्कि महाभारत और बौद्ध साहित्य में भी इसी प्रकार का भेद व्याप्त है। धर्म शास्त्रों में प्राय निम्नांकित 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। नंबर 4 रक्त संबंधित पुत्र, इन पुत्रों में किसी न किसी प्रकार माता अथवा पिता का रक्त सम्मिलित होता है। नंबर 1 औरस, यह पुत्र अन्य सभी पुत्रों में श्रेष्ठ है। इस पुत्र का प्रजनन शास्त्रतः विवाहित दंपति के वैध संपर्क से होता है, जबकि अन्य शास्त्रकार पत्नी की जाति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। वहाँ अपस्तंभ तथा बौधायन ने स्वर्ण स्त्री का प्रतिबंध लगाया है, यही पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, जबकि दूसरे प्रकार के पुत्रों को इसके सामने केवल भरण पोषण भर प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसकी सृष्टि पुष्टि बृहस्पति ने की है। मनु ने कहा है कि यदि बुरी नौका मिल जाए तो मनुष्य बड़ी कठिनाई से फल प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार औरस पुत्र के रहने पर अन्य पुत्रों का कोई फल नहीं होता। यदि औरस पुत्र 105 नीचे की स्त्री से अनुलोम विवाह द्वारा उत्पन्न हुआ हो तब भी वह वही स्थान ग्रहण करता है। नंबर 2 दौहित्र, इस शब्द की उत्पत्ति दुहिता से हुई है, अतः दुहिता यानी लड़की के पुत्र को जब नाना अपने वास्तविक पुत्र के अभाव में लेता है तो वह दौहित्र कहलाता है। इसे पुत्र का पुत्र भी कहते हैं जो इसकी प्रकृति के अनुसार उचित ही प्रतीत होता है। इसका स्थान पुत्र संख्या क्रम में कहीं दूसरा और कहीं तीसरा है। मनु ने उसे औरस पुत्र के समान ही बताया है, अतएव इसका स्थान दूसरा रखा है। गौतम ने इसे दसवें स्थान पर रखा है। महाभारत तथा ऋग्वेद में भी इस प्रकार के पुत्र का वर्णन है। वास्तव में औरस पुत्र के अभाव में यही उसका वास्तविक पूरक है। याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्री का पुत्र अपने औरस पुत्र के ही समान है। मनु ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि औरस और दोहित्र पुत्र में सापेक्षिक दृष्टि से कोई विशेष अंतर ही नहीं है। इसका कारण यह है कि पुत्री और पुत्र दोनों ही पिता के लिए समान है। इसलिए पुरातन काल में बंधु विहीन स्त्रियां अपने प्रथम पुत्र को अपने पिता के यहाँ भेज देती थी। धर्मशास्त्र के अनुसार बंधु विहीन लड़कियों के विवाह के समय ससुर और दामाद के बीच यह शर्त निश्चित हो जानी चाहिए कि पहली उत्पन्न संतान नाना की होगी, परंतु दूसरे शास्त्रकार इस प्रकार की शर्त को विशेष महत्व नहीं देते। ऋग्वैदिक काल में संभवतः यह व्यवस्था प्रचलित थी, क्योंकि जिन नारियों को भाई नहीं होते थे उनका विवाह बड़ी कठिनाई से होता था। इसका कारण यह रहा होगा कि दामाद यह समझता होगा कि उसे अपनी प्रथम संतति ससुर को देनी होगी, परंतु स्वयं पिता को भी पुत्र की आवश्यकता है, अतएव ऐसी स्त्रियों से सामान्यतः कोई विवाह करने को तैयार नहीं होता था। पर यास के अनुसार मातृहीन लड़कियां विवाह होने के बाद भी प्रति कुल की तथा पिता के पिंड दान हेतु पिता के घर चली आती हैं। इसलिए ऋग्वैदिक युग में बहुत सी नारियां अविवाहित रह जाती थी। इस प्रकार के पुत्र द्विपुत्रिक कहलाते थे, क्योंकि पिता उनका जन्मतः का तो होता ही था और नाना उसका धर्मतः पिता बन जाता था। इसलिए यास्क ने भाई के अभाव वाली बहनों से विवाह की मनाही की है। वशिष्ठ ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि यदि किसी को केवल लड़कियाँ हो तो वही उसके लिए पुत्र समझी जाएंगी। नंबर 3, क्षत्रज। जो क्षेत्र से जन्मा हो वह क्षेत्रज के नाम से जाना जाता है। नारी को क्षेत्र मानने के कारण इसे क्षेत्रज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि चूंकि माता का ही रक्त पिति और मातृपक्ष की ओर से इसमें विद्यमान होता है, इसलिए इन्हें क्षेत्रज अर्थात क्षेत्र से उत्पन्न बताया जाता है। इसे पुनः नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न पुत्र भी कहते हैं। यह प्रथा पहले प्रचलित थी, यद्यपि बीच में रुक गई, परंतु फिर भी आज तक कुछ निम्न जातियों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। इस प्रथा के उदय का कारण यह था कि क्षत्रिय जाति ऋषियों से अभिषिक्त होने तथा युद्धरत रहने के कारण संभवतः छीड़ होने लगी, अतएव वे औरस और पुत्रिका पुत्र के स्थान पर क्षत्रज पुत्र को प्राथमिकता देने लगे। पर यह ब्रह्मा पुराण की परिकल्पना कितनी प्रमाणिक है कहा नहीं जा सकता। जब स्त्री का पति बिना पुत्र उत्पन्न किए ही मर जाता है, तब उस स्त्री के सतीत्व की रक्षा, मानसिक संतुलन, काम वृत्ति की शांति, भावी जीवन के संरक्षण, वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए विधानतः उसे यह अधिकार प्रदान किया गया था कि इस प्रथा द्वारा पर पुरुष के संपर्क से पुत्र प्रजनित करा ले। स्मृतियों के अनुसार पुरोहित को यह अधिकार है कि पति के मरने के बाद इस प्रथा के लिए उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करे, लेकिन उसे चाहिए कि वह उसके किसी स्वजन को चुने। इस संबंध में यह भी निर्देशित है कि पहले उसके पति के छोटे भाई को ही चुनना चाहिए जो उसका उत्तराधिकारी बनता है। उसके अभाव में समीपस्थ और तब दूर का रक्त संबंधी नियत करना चाहिए। उसके अभाव में उसके गोत्र के किसी व्यक्ति को चुनना चाहिए और सबके अभाव में किसी ब्राह्मण को चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वे ही पुत्र क्षेत्रज समझे जाते थे जो नियुक्त व्यक्ति द्वारा उत्पन्न पुत्रों की संख्या में पहले या दूसरे हो। उसके बाद नियुक्त व्यक्ति का संबंध उस स्त्री के साथ वर्जित माना जाता था। यदि फिर भी वह संतान उत्पन्न ही करे तो वह संतति अवैध मानी जाती थी तथा उसको संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इस प्रकार का पुत्र अपने पिता तथा माता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। इसके साथ ही साथ यह अपने प्रजननकर्ता के पुत्र के अभाव में उसका भी उत्तराधिकारी बनता है। अतः इस प्रकार का पुत्र द्विपितीक कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रक्त शुद्धता के प्रेम के कारण ही नियोग प्रथा को बल मिला होगा। पर इसके साथ यह भी मान्यता है कि क्षेत्रज पर अधिकार केवल उसके वास्तविक पिता का होता है जिसकी स्त्री से वह उत्पन्न हुआ है। जैसे खेत में फसल चाहे जो भी बिखिर जाए पर उत्पादन क्षेत्र के स्वामी का ही कहलाता है। एक पक्ष इसका यह भी है कि पुत्र उत्पादक पिता का होता है, पति संतति को निरर्थक ही अपना बताता है। कौटिल्य तथा वशिष्ठ ने भी इसी का समर्थन किया है। इसका प्रश्न ऋग्वैदिक काल से ही था। ऋग्वेद में एक स्थान पर पति की मृत्यु पर देवर के साथ नियोग करने का उल्लेख मिलता है। वहाँ भारत में पांडु तथा अर्जुन का जन्म इसी प्रथा के अनुसार हुआ था। 300 ईसा पूर्व के पश्चात इस प्रथा का विरोध होने लगा था। अपस्तंभ के अनुसार नियोग द्वारा प्रजनित पुत्र प्रजननकर्ता का होता है, इसलिए इसका कोई महत्व पति के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नियोग करने वाला नरक का भागीदार बनता है क्योंकि वह विवाह की मर्यादा को तोड़ता है। बौद्धायन में भी इन्हीं के मत का समर्थन किया है। नारद भी इस प्रथा को घृणित दृष्टि से देखते हैं। मनु भी इसके विरोधी है। उन्होंने कहा है कि यह एक पशुवन प्रथा है जो राजा वेण के साम्राज्य में प्रचलित थी। इसकी स्वीकृति केवल उसी परिस्थिति में वह देते हैं जब किसी स्त्री को विवाह के लिए चुना गया हो और विवाह के पूर्व ही उसके पति की मृत्यु हो गई हो। पाराशर ने केवल इतना स्वीकार किया है कि नियोग द्वारा प्रजनित पुत्र केवल सहायक पुत्र होता है। नंबर 4, कानीन पुत्र। एक विद्वान के शब्द में पुरातन युग में भी लड़कियां जब कुंवारी अवस्था में ही गर्भवती हो जाती थी तो उस गर्भ से उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है। इसका कारण यह था कि समाज में यौन विवाह का प्रचलन था। जो स्त्रियां अपने को उस अवधि तक नियंत्रित नहीं रख सकती थी वे इस प्रकार गर्भवती हो जाती थी। कर्ण ऐसा ही पुत्र था। इस प्रकार के पुत्र को सहायक पुत्र माना गया है। ऐसी मान्यता थी कि यह औरस पुत्र के समान परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, परंतु औरस पुत्र के अभाव में इसकी अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर होता है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे पुत्र का पिता वही होता है जो उनकी माता से विवाह करे, पर इस संबंध में धर्म शास्त्रों में मतभेद है। याज्ञवल्प के अनुसार इस प्रकार का पुत्र नाना का होता है। वशिष्ठ के अनुसार वह अपने नाना की संपत्ति का अधिकारी होता है तथा उसको पिंडा देता है, लेकिन विष्णु एवं नारद आदि के अनुसार जो उसकी माँ से विवाह करेगा उसी का वह पुत्र होगा, नाना का नहीं। परंतु इससे जब संकट की आशंका हुई तो नारद ने उदार दृष्टिकोण अपनाया कि उसकी माँ से विवाह करने वाला यदि बालक को ग्रहण ना करना चाहे तब वह बालक नाना को दे दिया जाएगा। यदि इस प्रकार पुत्रवती होने पर उसकी माँ विवाह ना करे तब वह पुत्र अपनी माँ के साथ नाना के यहाँ ही रहता है। ऐसे पुत्रों का ज्ञान वैदिक काल से ही मिलता है। अथर्ववेद में इस प्रकार के पुत्र का विवरण मिलता है। वाज स्नेह संहिता में भी इस प्रकार के पुत्र का उल्लेख है, पर उसे पुत्रिका का पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। नंबर 5, गुणोत् पुत्र। डॉक्टर सहाय के शब्दों में जब किसी स्त्री का विवाह हो जाए और उसके बाद भी वह दूसरे पुरुष से प्रेम करती रहे तो इस अवैध संबंध द्वारा उत्पन्न पुत्र गुणोत्पन्न या गुणज कहलाता है। इसके नामकरण का कारण है कि पति के लिए वह गुण बना रहता है कि वह पुत्र उसका है अथवा किसी और का। धर्म शास्त्रों में इस प्रकार की छूट दी गई है कि यदि दंपत्ति को संतान ना हो तो वह इस प्रकार के पुत्र को औरस की तरह अपना सकता है। वह पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी तब तक रहता है जब तक पिता को कोई औरस संतान ना हो। जब अपने पुत्र का जन्म हो जाता है तब गुणज केवल भरण पोषण भर के लिए ही प्राप्त करता है। इसी से इसे दयादो की कोटि में अलग अलग धर्म शास्त्रों ने अलग अलग स्थान दिया है। नंबर 6, का सहोड़। नंबर 6, का सहोड़। कन्या यदि विवाह संस्कार के पहले गर्भिणी होती है तथा उसी के साथ जिस व्यक्ति के साथ उसका विवाह संपन्न होता है और विवाह के बाद उसे पुत्र पैदा होता है, वह पुत्र सहोड़ के नाम से जाना जाता है। मनु के अनुसार अक्षत योनि की कन्याओं का भी विवाह संस्कार होता है। यदि उसे पता हो कि वह पहले से ही गर्भिणी है तो विवाह होगा पर उसका संस्कार नहीं होगा। अतः यह पुत्र तो औरस के ही समान है, पर विधवत दंपति का विवाह संस्कारित होने के अभाव में उसकी स्थिति को औरस की अपेक्षा कुछ हे बन जाती है, इसीलिए इसे सहोड़ की संज्ञा दी जाती है। खा अपनाए गए पुत्र। किस प्रकार का पुत्र प्राय तभी अपनाया जाता है जब दंपति की अपनी कोई संतति ना हो। ऐसी स्थिति में यहाँ उसकी उत्तराधिकारी यहाँ उनका उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन यदि बीच में ही दंपति को औरस संतान हो जाती है, यह केवल भरण भर प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये दत्तक पुत्र के ही अवान्तर भेद प्रतीत होते हैं। नंबर एक, दत्तक। दत्त का अर्थ होता है देना। इस प्रकार दत्तक का अर्थ हुआ जो सुरुचि से अपने पिता द्वारा दिया गया हो। कोई भी अपना पुत्र उसी को देता है जिसे अपना पुत्र नहीं हो और वह दूसरे के पुत्र को अपनाने के लिए तैयार हो। चूँकि अल्प आयु में ही वह पुत्र दिया जाता है तथा ग्रहण करता उसे गोद में स्वीकार करता है, इसलिए इसे गोद लेने की प्रथा भी कहते हैं। बृहस्पति के अनुसार औरस और पुत्रिका पुत्र ही वास्तविक पुत्र है। पुत्रिका पुत्र को इसलिए वास्तविक माना गया है कि वह छाया होता है, परंतु गोद लिए गए निर्दोष पुत्र को भी इसी श्रेणी में उन्हें स्वीकार किया है। इस संबंध में शूद्रा के पुत्र की बड़ी पुख्ता की गई है। धर्मशास्त्र के पंडितों के अनुसार औरस और दत्तक को छोड़कर सभी अन्य प्रकार के पुत्र कालिव्रत बताए गए हैं। डॉक्टर सहाय के शब्दों में इसका प्रादुर्भाव इसलिए हुआ था कि ऋषियों को कोई संतान नहीं होती थी, वे विवाह नहीं करते थे, अतएव उनकी परंपरा को जीवित रखने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम नहीं था। पर इस परिस्थितिगत प्रथा को समाज ने अपने कल्याण के लिए अपना अधिकार मानकर स्वीकार कर लिया, इसलिए वैदिक काल में इस व्यवस्था को नियमबद्धता नहीं प्रदान की गई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि दूसरे पुत्र को ना ग्रहण करना चाहिए और ना ग्रहण करने का विचार ही करना चाहिए, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उस समय दत्तक प्रकार का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में विश्वामित्र द्वारा सुने सेव को जो दूसरे का पुत्र था अपना पुत्र बनाने का उल्लेख मिलता है, परंतु धर्मशास्त्रों के समय में यह प्रचलित एवं नियम बंद हो गई थी। मध्य काल में तो यह और अधिक विकसित हुई, क्योंकि जमींदारी और सामंती प्रथा से संपत्ति का कुछ ग्रंथों में अस्थायीकरण हो चला था। वे भी परस्पर युद्ध में लगे रहते थे, अतएव संपत्ति की रक्षा के लिए इस प्रकार के पुत्र की आवश्यकता स्वाभाविक थी। इसी से इस समय दत्तक मीमांसा आदि निबंधों का प्रेरण हुआ। दूसरे व्यक्ति को अपना पुत्र गोद देने का अधिकार पिता और माता दोनों को ही है। यदि पिता ना रहे तो माता अपने पति से अज्ञायित होने के बाद ही बालक को दे सकती है। पुत्र का देने का कार्य एक गवाह के रूप में सम्मुख होना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करे कि उसके सम्मुख पुत्र अपने पिता की आज्ञा के से सदा के लिए दूसरे परिवार को दे दिया गया है। इसकी पुनः पुष्टि के लिए राजा को भी सूचित किया जाता है। अब यह भी समस्या है कि क्यों और किसे पुत्र दिया जाए। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि जिसका वह पुत्र हो यदि वह दरिद्र हो और जिसे वह दिया जाए वह संपन्न हो तो पुत्र उसको दिया जा सकता है। वे लाभ के लिए पुनः पिता पुत्र को प्रतिनिधित्व करता है तथा उस पर पिता का एकाधिकार होता है, अतएव इस अधिकार से अधिकारित पिता पुत्र को दे सकता है। साथ ही जिसे औरस पुत्र ना हो उसे दिया जा सकता है। क्योंकि पुत्र होने की आवश्यकता की चर्चा पहले की जा चुकी है, शूद्र गोद नहीं ले सकता है क्योंकि वह होम नहीं कर सकता, पर दूसरे द्वारा होम कराकर उसे गोद का अधिकार कुछ शास्त्रकार सौंपते हैं। विचारणीय प्रश्न। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि जिस बालक को गोद दिया या लिया जा रहा है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए।
इस संबंध में प्रायः सभी ग्रंथ एकमत हैं कि पिता को कभी भी अपने प्रथम पुत्र को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ी आशा और लगन से उसके परिवार वाले उसके जन्म की प्रतीक्षा करते रहते हैं। पुनः वह पिता को नरक से निकालता है, वही श्राद्ध करता है तथा पिंड दान करता है, अतएव उसे कभी भी गोद नहीं देना चाहिए। साथ ही यदि केवल एक ही पुत्र हो तब भी उसे गोद नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही उपयुक्त कार्यों का संचालन करता है। अतएव जिसके कई पुत्र हो वह अपने बड़े लड़के को छोड़कर से सभी लड़कों को अथवा उनमें से किसी को गोद दे सकता है। प्रतिबंध। इस संबंध में यह भी प्रतिबंध बनाया गया है कि दत्तक पुत्र शिशु होना चाहिए, जो पिता उसे गोद ले उसी के घर उसका चूड़ा तथा उपनयन संस्कार होना यथेष्ट होता है। इस प्रकार उसकी अवस्था गोद देते समय 4-5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है, हमारे यहाँ धर्म शास्त्रकारों ने यह स्वीकार किया है कि गोद लिया हुआ पुत्र की छाया मात्र ही होता है। इसमें यह पुनः विधान है कि गोद लिया जाने वाला पुत्र गोद लेने वाले के गोत्र और वर्ण के समान होना चाहिए। इसलिए यह कहा गया है कि समीपस्थ संबंधी भाई का पुत्र अथवा दूर के ही संबंधी को अधिकतर गोद लेना चाहिए, परंतु बहन तथा लड़की के पुत्र को किसी भी परिस्थिति में गोद लेने से विवर्जित किया गया है। मनु ने अगोत्र पुत्र के गोद लेने की मनाही की है। नंद पंडित ने सगोत्र की समकक्ष को भी ग्रहण की मान्यता दी है। शौनक ने दूसरे गोत्र के बालक को गहरी बताया है। वशिष्ठ, विज्ञानेश्वर, शौनक आदि ने अपने सजाती को ही गोद लेने के लिए कहा है, परंतु उन्होंने फिर भी कहा है कि यह कोई कठोर प्रतिबंध नहीं है। इसकी पुष्टि मनु के इस कथन से भी हो जाती है कि जब किसी भी जाति अथवा गोत्र का बालक गोद लिए ले लिया जाए तो वह उसी जाति एवं गोत्र का हो जाता है जिसका उसका गोद लेने वाला पिता होता है। यदि गोद लेने के बाद औरस पुत्र का जन्म हो जाए तो दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में पारिवारिक संपत्ति का केवल चतुर्थांश भाग प्राप्त करता है। फिर भी इस भाग अंश के विषय में स्मृतकारों के मतों में बड़ी भिन्नता है। दत्तक चंद्रिका के अनुसार दत्तक और औरस का स्थान शूद्र के परिवार के समान होता है, परंतु दत्तक पुत्र संबंधियों की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, ऐसा कौटिल्य का विचार है। उन्होंने आगे बताया है कि दत्तक पुत्र की मृत्यु पर केवल 3 दिन की अपवित्रता बनी रहती है और इसी प्रकार उसे उसके माता एवं पिता की मृत्यु पर भी जिन्हें बालक को गोद लिया है। मारीच के अनुसार सगोत्र को 10 दिन का अशौच लगता है, उसे तथा उसके संतान को यह अथेष्ट है कि वे उत्पादक पिता तथा गोद लेने वाले पिता को पिंड दान दे एवं उसके लिए श्राद्ध करे। आधुनिक युग में यह परंपरा किसी न किसी रूप में प्रचलित है। पुरातन और आधुनिक युग में अंतर केवल इतना है कि अब गोद बहुत बाद में लिया जाता है, क्योंकि यह संभावना बनी रहती है कि कहीं बीच में संतति ना प्रजनित हो जाए। नंबर 2, कृत्रिम। डॉक्टर सहाय के शब्दों में कृत्रिम का अर्थ है बनाया गया। जब दूसरे परिवार या व्यक्ति के लड़के को बिना विधिवत गोद लिए अपना लड़का मना लिया जाए तो वह कृत्रिम कहलाता है। यद्यपि कुछ स्मृतिकारों ने इस प्रकार के पुत्र का उल्लेख किया है, पर बाद के न्यायिक इसको मानता नहीं देते। मिताक्षरा में इसे विधानतः स्वीकार किया गया है। कोई किसी को किसी समय अपना पुत्र बना सकता है, परंतु उस पुत्र का संबंध उसके वास्तविक परिवार से समाप्त नहीं होता है। नंबर 3, की कृत। अक्सर जब उपयुक्त रीति से पुत्र नहीं प्राप्त होते तो दूसरे के लड़के को क्रय कर अपना पुत्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रथा पहले भी प्रचलित थी। सून सेव को 100 पर अजी गर्त ने बेचा था, इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। यह प्रथा वर्तमान गुजरात में भी प्रचलित है। नंबर 4, स्वयंदत्त। डॉक्टर सहाय ने लिखा है कि प्रायः घर के कलह से परिवार की दरिद्रता अथवा अन्य विभिन्न कारणों से कोई कोई पुत्र घर से निकल भागते थे और अपने को दूसरे व्यक्ति के हाथों सौंप देते थे। क्योंकि इस प्रकार स्वयं ही वह अपने को दूसरे के हाथों सौंप देता है, इसलिए वह स्वयं दत्त कहलाता है। नंबर पांच अपवित्र का अर्थ है घर से बहिष्कृत किया हुआ। अक्सर माता की हीन स्थिति बालक के दुराचरण, उसके धर्म विरुद्ध जन्म, परिवार की दरिद्रता अथवा अन्य किसी भी दूसरे संभावित कारणों से जब माता पिता परिवार से बालक को भगा देते हैं तथा वह पलायित बालक दूसरे द्वारा अपना लिया जाता है तो वह अपवित्र कहा जाता है। नंबर छह लब्ध। एक विद्वान के शब्दों में यद्यपि यह सामाजिक मान्यता थी कि अवैध उत्पन्न बालक को उसकी माताएं रखे, फिर भी कभी कभी ऐसे पुत्र उत्पन्न होते ही फेंक दिए जाते थे और उन्हें कोई व्यक्ति उठाकर अपना लेता था, उसको लब्ध की संज्ञा दी गई है। आजकल भी इस प्रकार के पुत्रों का चलन उन परिवारों में है जहां और इस पुत्र नहीं है। नंबर सात पुनर्भव। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का भी पुत्र समाज में प्रचलित था जिसे पुनर्भव की संज्ञा दी गई है। पुनर्भव से अभिप्राय उस बालक से है जो उस माता से पैदा हो जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो तथा वह दूसरी शादी कर चुकी हो और यह बालक पहले पति के द्वारा अपनी माता के परित्यक्त होने के पूर्व ही गर्भस्थ हो चुका हो, परंतु इसका जन्म दूसरे पति से संबंध हो जाने पर ही हो। परिवार में पुरुष के स्थान। हिंदू समाज का मुख्य लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था। विवाह के समय देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि उन्हें शीघ्र पुत्र की प्राप्ति हो। ऋषि लोग कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए कहते थे कि पुत्रवती भव अर्थात पुत्रवती हो। वैदिक काल से लेकर परवर्ती हिंदू शास्त्रों में सर्वत्र पुत्र को महत्व दिया गया है। पुत्र को लौकिक तथा पारलौकिक मुक्ति व सुख का साधन माना गया है। पुत्र से ही परिवार की धारा बनी रहती है। पुत्र एष्टी यज्ञ का वर्णन भी मिलता है। महाराज दशरथ इसी प्रकार का यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्र प्राप्ति के लिए करवाए थे। इस प्रकार पुत्र का महत्व सूचित होता है। पुत्र की कामना के निम्नलिखित कारण थे। नंबर एक पिति ऋण से मुक्ति। पिता पुत्र की कामना इसलिए करता था कि वह पितरों के ऋण से मुक्त हो जाए। पिति ऋण से व्यक्ति तब तक मुक्त नहीं माना जाता था जब तक कि सृष्टि कर्म में योग देने के लिए पुत्रों उत्पत्ति ना करे। नंबर दो आत्मसंरक्षण। आत्मरक्षा के लिए भी पुत्रों उत्पत्ति की कामना की जाती थी। पुत्र वृद्धावस्था में जीवन का सहारा होता है, अतः इसे आत्मरक्षा भी होती है। नंबर तीन लौकिक सुख। पुत्र से लौकिक सुख भी मिलता है। पुत्र से भरा पूरा परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सुख प्राप्त होता है। नंबर चार पितरों का तर्पण व धार्मिक कर्तव्य। पुत्र पितरों का तर्पण करता है तथा प्रत्येक धार्मिक क्रियाविधि का प्रतिपादन करता है। अपुत्रवान पुरुष लोग के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता है, अतः हिंदू शास्त्रों में पुत्र का बड़ा ही महत्व है। पुत्र के कर्तव्य। हिंदू शास्त्रों में पुत्र के निम्नलिखित कर्तव्य माने गए हैं। नंबर एक माता पिता की सेवा करना। नंबर दो माता पिता के भरण पोषण का प्रबंध करना। नंबर तीन माता पिता की आज्ञा का पालन करना। नंबर चार रक्षा करना। निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से हिंदू परिवार में पुत्र के महत्व का प्रकाश पड़ता है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही चल व अचल संपत्ति का मालिक होता था। प्रायः यह अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को दिया था और वही पिता के स्थान पर पिता की भांति छोटे भाई बहन आदि का पालन करता था। आर्यों के गृह कर्म कांड। भारतीय धर्म ग्रंथों में गृहस्थ के द्वारा पालन किए जाने वाले कर्म कांडों का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। उस समय का व्यक्ति प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर रात्रि शयन से पूर्व तक सभी छोटे बड़े कार्य नियम संयम से करता था। आर्यों में ब्रह्मचर्य की अवधि पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति का जीवन पाणी ग्रहण संस्कार से प्रारंभ होता है। परिवार कुल की वृद्धि के लिए धर्म शास्त्रों ने घर के कार्यों को स्पष्ट रूप से लिखा है। कर्म कांड वे ही थे जो आर्यों को नित्य प्रति घर में करने पड़ते थे। ये कर्म कांड पांच भागों में विभक्त किए गए हैं। इसे पंच महायज्ञ भी कहते हैं। ब्राह्मणों, आरण्यक, धर्मसूत्र तथा सभी स्मृतियों में इनके बारे में लिखा हुआ है। ये पंच महायज्ञ इस प्रकार हैं। नंबर एक ब्रह्मा यज्ञ। इसका प्राचीनतम उल्लेख संभवतः शतपथ ब्राह्मण में है। यहाँ ब्रह्मा यज्ञ को प्रतिदिन किया जाने वाला वेद का स्वयं अध्याय बतलाया गया है और इसका फल स्वर्ण पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी के दान से प्राप्त होने वाले लोक के तीन गुना अक्षय लोक बताया गया है। यह स्वयं अध्याय की महिमा का सूचक अर्थ बाद में मात्र थे। इसका उद्देश्य सबको इतिहास पुराण और वेदा अध्ययन में प्रवृत्त कराना था। ब्रह्मा यज्ञ में वेद के अतिरिक्त वेदांग गथाना राशनी वीरों की स्तुतियां तथा अन्य विद्याओं का अध्ययन भी सम्मिलित था। इसका प्रभाव प्रयोजन वैदिक ज्ञान की प्राचीन परंपरा को सुरक्षित रखना तथा आगे बढ़ाना था। इसी वैदिक स्वाध्याय से वैदिक साहित्य कंठस्थ होकर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहा। बाद में यह यज्ञ वेदा अध्ययन का प्रतीक बन गया। नंबर दो, देव यज्ञ। श्रद्धा भाव से देवताओं के लिए जो आहुतियां दी जाती थी उन्हें यज्ञ कहा जाता था। ऐसा करना प्रत्येक साधनहीन घर वाले के लिए संभव न था। प्रत्येक व्यक्ति इतना संपन्न नहीं होता था कि बड़े बड़े यज्ञ करे। इसलिए देवताओं के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट करने का यह सरल साधन था। ये आहुतियां सूर्य अग्नि तथा प्रजापति आदि देवताओं के लिए दी जाती थी। नंबर तीन, भूत यज्ञ। घर में रोज प्रयोग किए जाने वाले अन्न में से भूतों के लिए जो बलि निकाली जाती थी उसको ही भूत यज्ञ कहते थे। इंद्र यम वरुण आदि देवों के अतिरिक्त भूतों पितरों तथा अंत में कुत्तों पतितों चंडालों कोढ़ी आदि पाप रोगों वाले तथा कौवे एवं कीड़े के लिए भी बलि निकाली जाती थी। यह यज्ञ संपूर्ण चराचर जगत में सबके प्रति उदारता एवं सहिष्णुता के भाव का प्रतीक है। अकेले भक्षण करना भारतीय परंपरा से पाप समझा जाता था। हमारा आदर्श त्यागपूर्ण भोग था। यह यज्ञ इसी त्याग भावना का प्रतीक है। नंबर चार, प्रति यज्ञ। इस यज्ञ के द्वारा पितरों का सम्मान किया जाता था। यह सम्मान जलदान या तर्पण द्वारा बलि प्रदान करके तथा प्रतिदिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर किया जाता था। नंबर पाँच, मनुष्य यज्ञ। इस यज्ञ के द्वारा अतिथियों का सम्मान किया जाता था। वैदिक काल में स्नातक को उपदेश देते हुए अतिथि को देव रूप में मानने की शिक्षा दी जाती थी। अथर्ववेद में लिखा है, अतिथि देवो भव। अतिथि को भोजन कराने से अनेक पापों का नाश होता है। अतिथि के पहली रात निवास करने से पृथ्वी के पुण्य लोग, दूसरी रात में रहने से नक्षत्र के पुण्य लोग, तीसरी रात में भूलोक तथा चौथी रात में रहने से गृहस्थ को पुण्य लोक का फल प्राप्त होता है। परवर्ती स्मृतिकारों ने भी इसी प्रकार के भाव प्रकट किए हैं। मनु ने अतिथि सेवा से धन आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति की बात कही है। पराशर ऋषि ने भी लिखा है कि अतिथि की सेवा करने वाला स्वर्ग जाता है। महाभारत में भी अतिथि सत्कार की बड़ी महिमा गाई गई है। अतिथि ब्राह्मण के समान माना जाता था, परंतु भोजन के समय यदि नीच मनुष्य भी आ जाए तो उसे हम अतिथि समझेंगे। नंबर छह, अन्य प्रकार के कर्म कांड। यह कि गृह जीवन में अन्य प्रकार के कर्म भी करने पड़ते थे। एक कर्म निम्न प्रकार के थे। नंबर आग को बराबर जलाए रखना। नंबर छह, दूसरों का पोषण करना। नंबर ज आजीविका। च आग बराबर जलाना। पाणि ग्रहण के समय आग को बराबर जलाने के लिए कहा गया है। गृहपति की अनुपस्थिति में गृहिणी या उसकी पुत्री अग्नि को जलाती रहेगी, ऐसा विधान है। बराबर आग जलाने का मतलब है कि कुल को बराबर बनाए रखना। नंबर छह, दूसरों का पोषण करना। गृहस्थ अपना कर्तव्य समझकर दूसरों का पालन पोषण करता है। उसके आश्रित माता पिता पुत्र पुत्री तथा शरण में आया हुआ कोई भी असहाय व्यक्ति गृहपति द्वारा पोषित होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अतिथि के साथ साथ भोजन करे। मनु ने लिखा है कि जो लोग अतिथि से पहले भोजन कर लेते हैं उनके शरीर को गिद्ध तथा कुत्ते खाते हैं। नंबर जा आजीविका। जीव को पार्जन करना आजीविका कहलाता है। मनु के अनुसार आजीविका के कई नाम है। नंबर एक, ऋतु। खेत कट जाने के बाद उसमें से सिला बीनना, नंबर दो अमृता बिना मांगे भिक्षा प्राप्त करना, नंबर तीन मृत मांगी हुई भिक्षा, नंबर चार प्रेमवश किसी का कार्य, नंबर पाँच सत्यांत वाणिज्य तथा व्यापार का काम, नंबर छह स्व वित्तीय सेवा का कार्य करना। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस प्रकार धन कमाता है उसको स्वर्ग या नरक का फल उसी के अनुसार मिलेगा। कुछ अन्य स्मृतियों में भी न्यायपूर्ण ढंग से धन कमाने के बारे में कहा गया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृहस्थ को सत्य अहिंसा तथा सब प्राणियों पर दया के अनुसार गृहस्थी के कार्य करना चाहिए। गृहस्थ को किसी दूसरे स्त्री के साथ संपर्क रखना चाहिए, अपनी स्त्री को धरोहर के समान समझकर रक्षा करनी चाहिए, मधु मांस आदि का सेवन नहीं करनी चाहिए, किंतु परिवार को गृहस्थ आश्रम में रखकर इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे वह संसार में लिप्त ना हो जाए। यह संसार कर्म भूमि बांधकर निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य उत्तम ढंग से कार्य करता है तो वह अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन भारतीय समाज में नारी का स्थान। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों की तरफ देखना होगा। भारतीय इतिहास के प्रत्येक युग में नारी की दशा बदलती रही है। कभी उसके अधिकार पुरुषों के समान थे तो कभी वह अधिकार रहित दिखलाई पड़ती है। रायडन का यह कथन सत्य है कि स्त्रियों ने ही प्रथम संस्कृति की नींव डाली। उन्होंने ही मारे मारे भटकते हुए पुरुष का हाथ पकड़कर स्थित जीवन अर्थात घर में बसाया। भारतीय परिवार में नारी की दशा का वर्णन हम निम्नलिखित शीर्षकों में करेंगे। नंबर एक, वैदिक काल में नारियों की दशा। वैदिक आर्यों में नारी का स्थान सर्वोच्च था, यहाँ तक कि उसे पुरुषों से भी अधिक महत्व दिया जाता था। परिवार में माता का स्थान अतुलनीय होता था, सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वह यज्ञ से लेकर संतानों के पालन पोषण व धार्मिक कार्यों तक के सभी कार्यों की देख रेख करती थी। वेद व शास्त्रों का अध्ययन करने वाली अनेक नारियों के नाम पुराणों में सम्मान के साथ आए हैं। गार्गी, सप्तआड़ी आदि इसी प्रकार की नारियां थी। नारियां अश्वारोहण करती थी, धनुष बाण चलाती थी तथा युद्ध भूमि में पति के साथ भी जाती थी। स्त्री पुरुष साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। वैदिक काल में पत्नी के अभाव में पुरुष कोई काम नहीं कर सकता था। प्राचीन आर्य साहित्य में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा स्मृति ग्रंथ व पुराणों में सर्वत्र नारी की महिमा के वर्णन मिलते हैं, जिससे प्राचीन भारत में नारियों की महानता के दर्शन होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री के ना रहने पर पुरुष धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त कर सकता। पत्नी के अभाव में जीवन व्यर्थ है। जीवन रूपी रथ के संचालन में नारी एक पहिया के समान है। वह पुरुष के हृदय राज की सामग्री होने के साथ साथ धर्म की धरती व सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी के समान है। वैदिक काल में उसका महत्व सर्वोपरि था, इस बात के प्रमाण मिलते हैं। उसे पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त थे, बिना उसकी राय के कोई काम नहीं हो सकता था। परंतु नारी की यह दशा आगे के युगों में बदल गई। उसकी स्वतंत्रता तथा असीमित अधिकार पर पाबंदी लगा दी गई और उसके कर्तव्य व अधिकार निर्धारित किए जाने लगे। उत्तर वैदिक काल तक तो नारी की दशा पूर्ववत बनी रही। उपनिषदों तथा स्मृति ग्रंथों में उसका स्थान महत्वपूर्ण था। मनु, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, नारद, भृगु आदि स्मृतियों में नारी के श्रेष्ठत्व का वर्णन मिलता है, पर महाभारत व रामायण कालीन भारत में उसका महत्व घट गया है। नंबर दो, रामायण काल में नारी की दशा। इस युग में भारतीय नारी का स्थान यद्यपि पुरुष के बराबर माना जाता था, पर व्यवहारिक दृष्टि से समाज पुरुष प्रधान था। नारी का स्थान क्रमशः गिर रहा था। राम ने खुद सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद एक धोबी द्वारा ताना मारे जाने पर सीता को वन में छुड़वा दिया था। लंका विजय के बाद राम के पास जब सीता आती है तो राम कहते हैं, कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को प्रेम के लालच से ग्रहण करेगा। तो तुम रावण की गोद में बैठकर भ्रष्ट हो चुकी हो, उसकी कुदृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। अपने उच्च कुल का बखान करते हुए मैं तुम्हें भला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अतः तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, मेरा तुमसे कोई अनुराग नहीं है। इस प्रकार गर्भावस्था में राम द्वारा सीता का निष्कासन और वह भी अग्नि परीक्षा के बाद नारी पर पुरुष के अत्याचार का द्योतक है। नारी वैदिक काल में स्वतंत्र थी, यहाँ तक कि वह कामेच्छा की तृप्ति के लिए किसी मनचाहे पुरुष से लैंगिक संबंध स्थापित कर सकती थी। स्मृतियों में नारी को सदा पवित्र माना गया है, पर पुरुष के सहवास से उसे तभी तक अपवित्र माना जाता था जब तक कि वह रजस्वला ना हो जाए और इसके बाद वह फिर पवित्र है। रामायण काल में उसकी स्वच्छंदता बाधित होकर कठोर प्रतिव्रत धर्म के पालन तक सीमित हो गई और पुरुष के अत्याचार बढ़ने लगे। रामायण में सुमाली ने कहा है कि कन्या का पिता होना दुख का कारण है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में पुत्री दुख का कारण बनती है। इसी प्रकार रामायण कालीन भारतीय नारी वैदिक नारी की अपेक्षा नीचे गिर गई थी। नंबर 3, महाभारत कालीन भारतीय नारी। इस काल में नारी की दशा में और अधिक हास दिखलाई पड़ता है। इसकी स्वतंत्रता की बात तो दूर रही, उसे बेचने की वस्तु तक माना जाने लगा। इस युग की नारी पुरुष की व्यक्तिगत संपत्ति थी, जिसे वह किसी को दे सकता था अथवा बेच सकता था। वह जैसे चाहे नारी का उपयोग कर सकता था। युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए थे। कौरवों के दरबार में राजस्वला होते हुए भी द्रौपदी का चिरहरण नारी की कितनी निम्न अवस्था का परिचायक है कहा नहीं जा सकता, और वह भी उस समय जब कौरव व पांडव कुल के पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा पांचों भाई पांडव व अनगिनत सगे संबंधी आचार्य पुरोहित सभी बैठे हुए थे, लेकिन किसी की जबान तक नहीं हिली। यही नहीं, नारी को जबरन उठा ले जाना, उसके साथ विवाह कर लेना, अत्याचार करना, दान दे देना, बेच देना आदि परंपराओं के दर्शन भी इसी काल में होते हैं। जिस द्रौपदी के रूप में गुण, शील तथा आचार की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर कभी नहीं थकते थे, उसी को जुए पर लगा देना उनके भोले चरित्र व नारी को मात्र व्यक्तिगत संपत्ति समझने का परिचायक नहीं है तो क्या है। कदाचित महाभारत काल में नारी की मर्यादा काफी नीचे गिर गई थी। इस काल में बहुविवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह की परंपरा के दर्शन होते हैं। वर्ण अंतर विवाह का प्रचलन भी दिखलाई पड़ता है। एक ओर महाभारत काल में जहां नारी की गिरी हुई दशा पर परतंत्रता के दर्शन होते हैं, वहीं कहीं कहीं पर स्वतंत्रता के भी दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए कुंती ने अपने पांचों पुत्रों को दूसरे से जन्म दिया था। कुंवारेपन में ही कर्ण का जन्म सूर्य के तेज से हो गया था। भीष्म के पिता शांतनु ने मछेरे की कन्या से विवाह कर लिया था। व्यास ने एक शूद्र कन्या से संपर्क किया जिससे विदुर पैदा हुए थे। व्यास ने ही अम्बा और अम्बालिका को पुत्र दान दिया था। इस प्रकार संतान प्राप्त करने की स्वतंत्रता एक साथ कई पुरुषों की पत्नी होने की स्वतंत्रता के भी दर्शन होते हैं। परंतु सब मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि महाभारत काल में नारी की दशा मात्र भोग्या, व्यक्तिगत संपत्ति तथा पुरुष की दासी के रूप में रह गई थी। उसके अधिकार नाम मात्र को रह गए। नंबर चार, बौद्ध व जैन काल में नारी की दशा। इस युग को ईसा पूर्व 600 वर्ष पहले से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। इस काल में भारतीय नारी की दशा में कुछ सुधार हुआ, वह अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका। महात्मा गौतम बुद्ध की उदार नीतियों के परिणाम स्वरूप नारी के साथ होने वाले अत्याचार कम हुए और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ा तथा उसे संन्यास ग्रहण करके बौद्ध भिक्षुणी बनने तक का अधिकार दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य महायान शाखा में बौद्धों ने तिरोहित कर दिया। बौद्ध संघार रामों में नारी के प्रवेश से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है, उससे बौद्ध मंदिरों की पवित्रता नष्ट हो गई है और ये मंदिर व्याभिचार के केंद्र बन गए। नारी को विविध रूपों में मात्र कामोपभोग की वस्तु माना जाने लगा तथा इसी रूप में उसकी वंदना की जाने लगी। महायान की व्रजयानी शाखा में तो खुलकर मांस और मैथुन का प्रयोग होने लगा था, जिससे बौद्ध धर्म पतन के गर्त में गिरकर नष्ट हो गया। इस प्रकार बौद्धों का त्याग व तपस्या में आदर्श दृष्टिकोण पतित होकर इंद्रिय भोग में बदल कर रह गया और नारी वासना की प्रतिमूर्ति बनकर रह गई। इसी प्रकार जैन धर्म की अतिशय संन्यास मार्गी प्रवृत्ति ने भी नारी की निंदा की और उसे अरहत बनने के मार्ग की प्रधान बाधा माना। इन युग में नारी विषयक दृष्टिकोण में कोई खास सुधार नहीं दिखलाई पड़ता है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि नारी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती थी। इस युग के बाद नारी की दशा में उत्तरोत्तर ह्रास होता गया और मध्य काल तक तो उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त कर दी गई। अब नारी पुरुष की दासी के रूप में बदल गई थी, जो आज भी चली आ रही है। उपरोक्त युगों में नारी की दशा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल के बाद नारी का स्थान समाज में निम्न से निम्नतर होता गया। वह स्वतंत्रता से परतंत्रता की ओर बढ़ती गई और मध्य काल तक तो पुरुष की दासी बनकर रह गई। वैदिक काल में नारी को अनेक अधिकार मिले थे, जिनमें कुछ मुख्य अधिकार निम्नलिखित थे। नंबर एक गृहिणी के रूप में अधिकार। नंबर 2 माता के रूप में व पत्नी के रूप में अधिकार। नंबर 3 धार्मिक व कर्म कांड संबंधी अधिकार। नंबर 4 यौन संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 पठन पाठन व शास्त्रार्थ करने का अधिकार। नंबर 6 शास्त्र चालन घुड़सवारी व युद्ध में भाग लेने का अधिकार। नंबर 7 संपत्ति का अधिकार। नंबर 8 साहित्य सृजन व ग्रंथ रचना का अधिकार। नंबर 9 संतान प्राप्त करने का अधिकार। संतान प्राप्ति का अधिकार वैदिक नारी की इस रूप में प्राप्त था कि यदि उसका पति रोगी होकर मर गया हो अथवा संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं हो, तो वह किसी भी पुरुष से कम से कम 3 संतानें उत्पन्न कर सकती थी। ऋतु काल आने पर नव युवती स्त्री किसी भी पुरुष से अपनी पिपासा की तृप्ति कर सकती थी। यह उसका नैसर्गिक अधिकार था, जिसे दबाया नहीं जा सकता था। इसी प्रकार काम पीड़ित पुरुष किसी भी औरत पर मुग्ध होकर उसकी इच्छा से संभोग कर सकता था। इस प्रकार के उदाहरणों से वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। ऋषि लोग तपस्या करते थे, पर जब किसी रूपसी कन्या अथवा अप्सरा को देखने पर काम उत्पन्न होता था तो उसकी तृप्ति कर लेते थे और फिर तपस्या में लिप्त हो जाते थे। इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा को आंच नहीं आती थी। इस प्रकार की कथाएं पुराणों में अधिकता से मिल जाती हैं। इससे पता चलता है कि औरत किसी के साथ भी लैंगिक संबंध स्थापित कर सकती थी। उसका यह संबंध अस्थायी नहीं माना जाता था, यह केवल काम पिपासा की तृप्ति तक सीमित था। वैदिक कालीन नारी की दशा पर विचार करते हुए डॉक्टर राधा किशन ने लिखा है कि वैदिक युग में धर्म की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति यज्ञ था। पति और पत्नी दोनों इसमें भाग लेते थे। लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों को अलग रखने की प्रथा पहले नहीं थी। कन्याएं स्वच्छंद जीवन व्यतीत करती थी। पति के चुनाव में उनकी आवाज निश्चयात्मक होती थी। स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में अधिकार होता था। पैतृक संपत्ति का कुछ अंश दहेज के रूप में दिया जाता था, जिसे लेखकों ने स्त्री धन कहा है। महाकाव्यों के काल में स्त्रियां तप करती थी, धृतव्रता सतपति और सुलभा अविवाहित रही। स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। निष्कर्ष: उपरोक्त विवेचन से नारी की प्राचीन भारत में दशा का पता चल जाता है। वैदिक नारी का जो पतन परवर्ती साहित्य में दिखलाई पड़ता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय नारी धीरे धीरे निम्न स्तर को प्राप्त होती गई।